आपको धन्यवाद, प्रभु आपको आशीष दे, आप बैठ सकते हैं। आज मेरा पुत्र ऊपर था और उसने कहा, पिताजी मेरी इच्छा है हम उस आराधनालय को बनाने से पहले देखेंगे, ये एक ऐसा सुंदर स्थान है। उसने इस विषय में बातें की, कहा मैं अब तक कभी भी सेवक से नहीं मिला हूँ, परंतु यदि वो एक ऐसा भला व्यक्ति है जैसे उसकी पत्नी, निश्चय ही वो भला व्यक्ति है। इसलिए हम यहाँ आकर आनंदित हैं और मैं आज रात्रि होने वाली सभा को देख रहा हूँ कि परमेश्वर अपनी आशीषें हम पर उंडेल रहा है और हमारी सहायता कर रहा है। अब मैं बस भीतर आया और मैंने भाई विलियम को सुना, मैं विश्वास करता हूँ रमादा में होने वाले के विषय में कुछ कह रहे थे और मैं समझता हूँ इस विषय में घोषणा हो चुकी है। अक्सर इसके पहले कि मैं वहाँ पहुँचूँ वे इसकी चिंता कर लेते हैं और निश्चय ही हम एक महान समय की प्रतीक्षा इस बेदारी में कर रहे हैं। और यहाँ एक प्रकार से मेरा भाग आसपास जाना और भाइयों से मिलना और लोगों के बीच संगति करना और प्रार्थना करना कि परमेश्वर हमें सही प्रकार की हलचल रमादा की इस महान सभा में दे। और इसलिए हम उस समय तक यत्न कर रहे हैं कि कलीसियाओं में जाकर भेंट करें जितना संभव हो सके, और हमारे पास एक महान समय है। निश्चय ही हमारा एक शानदार समय है अपने भाइयों के साथ संगति में। और अक्सर मैं, कोई भी जानता है मैं प्रचारक नहीं हूँ, मैं तो एक प्रकार से बचा हुआ पहिया हूँ, परंतु मैं मेरी सेवकाई बीमारों के लिए प्रार्थना करने की है और मैं रात्रियों में हमारे पास बहुत भीड़ हो जाती है और आदि आदि कि हमारे पास ऐसा करने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं होता। हम इस बात का यत्न करने जा रहे हैं, यदि हम जब हम उन स्थानों में पहुंचते हैं जहां हम हो सकते हैं यहां पर कि कुछ पत्र दें और लोगों को अंदर लाकर उनके लिए प्रार्थना करें, परंतु एक समय में एक रात्रि की सभा करें जो आप आज रात्रि नहीं ले पाएंगे और फिर वे उन पर दबाव डालेंगे वहां कहीं अगली रात्रि और वहां कहीं और। इस प्रकार से मैं एक प्रकार से एक छोटी छोटी परिचर्चा हर रात्रि लोगों के लिए करूं और सबसे अच्छा जो कर सकता कि यीशु मसीह का सम्मान और महिमा और उसे जिसे हम सब प्रेम और विश्वास करते हैं और हमारी संगति एक साथ। मैं समझता हूं आपने कोने में दुर्घटना सुनी है कुछ क्षणों पहले, मैं नहीं जानता कि वो व्यक्ति मारा गया या वो जो भी था, कार निकलती हुई आई, हम बस रुक गए और बस प्रार्थना की और कुछ क्षणों पहले लगभग दो खंडों के ऊपर वहां कोई एक और से टकराया और सीधा सड़क पर जा गिरा और एक बड़ा व्यक्ति वहां ढका हुआ और वहां पुलिस वाले। मैं नहीं सोचता कि एम्बुलेंस तब तक वहां पहुंची, उन्हें चाहिए यदि वो मरा नहीं था ये निश्चय ही था, और एक ओर से टकराया और दूसरी ओर से बाहर दरवाजे से निकल गया। ये बहुत ही भयानक झटका होना चाहिए, आप जानते हैं। ये बस हमें हर मिनट परमेश्वर की सेवा करनी चाहिए। हम नहीं जानते कि किस समय चीजें घटित हो सकती हैं। हम सोचते हैं संभव है ये हमारे साथ नहीं होगा, परंतु आप जानते हैं ये हो सकता है, आप जानते हैं। इसलिए मैं विश्वास करता हूँ यीशु ने कहा तैयार रहो, क्योंकि हम नहीं जानते कि किस मिनट या घंटा कि हमें बुला लिया जाए, और तब हम उस स्थान पर जाएंगे जहां दुर्घटनाएं नहीं होंगी और परेशानियां नहीं। हम बहुत आनंदित हैं कि प्रतिज्ञा में इस प्रकार का स्थान है। आप जानते हैं कि यही विचार आज रात्रि ये देखने का कि हम ऐसे स्थान की प्रतीक्षा में हैं, जो ये दिखाता है कि इस प्रकार का स्थान है, समझे। हम जानते हैं कि सारे नकारात्मक सारी परछाइयां वहाँ कुछ होना चाहिए कि परछाई बनाए, एक परछाई एक परावर्तन है। इसलिए यदि इस प्रकार का जीवन है ये सिद्ध करता है कि ये एक परछाई है, तो वहाँ एक वास्तविक जीवन कहीं है, ये एक परावर्तन है, समझे। आप एक पेड़ पर ध्यान करें, पेड़ कितना सुंदर है, और आप जानते हैं कि वो क्या है, ये नकारात्मक प्रतीक पेड़ की छाया है स्वर्गीय जीवन का। अब आप जानते हैं जब परमेश्वर पृथ्वी पर आया, जब वो पृथ्वी के आरंभ में इस पर चिंतन कर रहा था, और संभव है पहली चीज जो वो मेंढक का बच्चा हुआ जैसे वैज्ञानिक कहने का यत्न करते हैं, अगली चीज कुछ हो सकता है। मैं सच्चे मसीही विकास क्रम में विश्वास करता हूँ, परंतु मैं विश्वास नहीं करता कि ये सब एक ही अकेली कोशिका से आया है। मैं विश्वास करता हूँ ये परमेश्वर ने एक मेंढक के बच्चे को बनाया और फिर उसने मछली को बनाया और फिर उसने किसी और चीज को बनाया और बस, फिर मैं विकास में विश्वास करता हूँ उसी एक कोशिका से नहीं, परंतु हर बार एक भिन्न जीव से, और अंत में वो करता रहा, ऊंची जाति पर आया और कुछ समय बाद उसको परावर्तित किया जो चिंतन कर रहा था, जो कि परमेश्वर था। और अब इसे सही सिद्ध करने के लिए जब परमेश्वर देहधारी हुआ था वो यीशु मसीह था, एक मनुष्य, समझे। इसलिए वो एक स्वर्गदूत नहीं, एक मनुष्य, इसलिए ये दिखाता है कि ये उसका प्रतिबिंब हुआ। और ओ, ये पुरानी बाइबल दया की उन पुरानी सोने की डलियों से भरी पड़ी है। मैं बस मैं इसे खोजना पसंद करता हूँ, क्या आप नहीं? और बस इसमें जाएं और इस पर की सारी धूल को हटाएं और इसे देखें और देखें कि ये क्या है, कैसे रत्न। आप यहाँ लोग एरिजोना में जानते हैं, बड़े रत्न पृथ्वी की मिट्टी में से निकल कर आते हैं, और परमेश्वर के रत्न भी मिट्टी में से निकाल कर लाए गए। और वो, हम बहुत ही आनंदित हैं कि वो हमें सौभाग्य देता है कि उसके महान परिष्करण शाला में जाएं और सारा धातु मल निकाल दिया जाए। आप जानते हैं वे कैसे करते थे? निसंदेह आप एरिजोना के लोग जानते हैं कैसे वे, इससे पहले कि उनके पास गलाने का कुछ था, कैसे वे सोने को शुद्ध किया करते थे। हमें बताया गया कि वे सोने को लेकर पीटते, पुराने इंडियन ने ये किया करते थे, इसे पीटते और इसे उलटते और इसे पीटते और इसे पीटते जब तक इसका सारा धातु मल बाहर नहीं कर देते। और जिस प्रकार से वे इस सब को जानते बाहर किया, सारा पाइराइट और सारी चीजें जो इसमें, वो सब जब वे जान गए कि कैसे पीटने वाला अपना प्रतिबिंब इसमें देखता है, वो स्वयं को देख सकता था, तब वो जान जाता ये साफ हो रहा है जब उसका अपना प्रतिबिंब उसमें दिखाई पड़ता। और आप जानते हैं, मैं सोचता हूँ परमेश्वर अपनी कलीसिया से ये इस प्रकार चाहता है, पीट कर सारे संसार को बाहर कर जब तक यीशु मसीह का प्रतिबिंब हम में से प्रत्येक में वास करे और हम उसके जीवन को प्रतिबिंबित करें, तब हम उसके लिए तैयार हैं। वो अपने आप को उस समय हम में से होकर परावर्तित करता है जब हम हर बोझ और पाप को एक ओर रख देते हैं जो हमें सरलता से घेर लेते हैं, ताकि हम दौड़ को धैर्य के साथ दौड़ें जो हमारे सामने है। उदाहरण को देख रहे हैं, यीशु मसीह जो हमारे विश्वास का लिखने वाला और पूरा करने वाला है, इसके लिए बहुत आनंदित हैं। अब अक्सर मैं प्रत्येक रात्रि में कहता हूँ, मैंने भाई कार्ल विलियम से कहा, मैंने कहा भाई कार्ल, वे लोग मुझे दोबारा नहीं सुनना चाहते, उस घाटी में ऊपर नीचे होते हुए उन लोगों को दो या तीन घंटों तक रात्रि में रोके हुए। उसने कहा भाई ठीक है आइए, इसलिए मैं आपके धैर्य की सराहना करता हूँ कि मुझे फिर से निमंत्रण दिया। और अब प्रत्येक रात्रि, थोड़े समय पहले मैंने अपनी पत्नी से बातें की, वहाँ वो अब ट्यूसान में है, और मैंने कहा मौसम कैसा है, उसने कहा गर्मी हो रही है, और उसने कहा क्या आप कार्यक्रम के अनुसार हैं, मैंने कहा बिल्कुल ठीक, हर रात्रि लगभग 10 या 11। मैंने उससे कहा मैं कुछ विश्राम करने जा रहा हूँ जब मैं एरिजोना जाऊँगा, इस बार इस छोटी सभा में, मैं उन कलीसियाओं में जा रहा हूँ, उन भाइयों के पास, मैं उन लोगों को दंड देने नहीं जा रहा हूँ, मैं तो बस जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ कि गीत गाए जाएं, जयंती में मैं अपने को सीमित करने जा रहा हूँ, अपनी टिप्पणियों को लगभग 15-20 मिनटों में कहें आमीन और घर जाएं। उसने कहा क्या आप समय सारणी पर हैं? मैंने कहा हाँ प्रिय, मैं निर्धारित समय पर हूँ, 3 घंटों तक। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत धैर्य है। अच्छा, आइए अपने सिरों को झुकाएं जरा एक क्षण, जैसा कि हम उस तक पहुंच करते हैं। अब मैं निश्चित हूं इस प्रकार के लोगों की शानदार सभा में जो विश्वास करते हैं, और विशेषकर मैं यहां दो चारपाइयां पड़ी देखता हूं जो लोग बीमार हैं और आवश्यकता में हैं। मैं जानता हूं उनके विशेष निवेदन हैं, कोई संदेह नहीं, परंतु जो वहां और दूसरे हैं जिनके ये निवेदन है, यदि ऐसा है बस अपने हाथों को उठाएं, और जैसा कि आप अपने हाथों को उठाते हैं ये मालूम हो जाए। और जब मैं प्रार्थना में जा रहा हूँ और इन लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा जो इन चारपाइयों पर हैं, जबकि हम यहाँ पर हैं, इसलिए हमें निश्चित है कि इसे लें, यदि कुछ घटित होता है। वे इतने निष्ठावान थे कि यहाँ पर लाए गए। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम हर दूसरे विचार को एक ओर रख रहे हैं, हमारे मस्तिष्कों को शुद्ध कर दें, और हम आपकी उपस्थिति में आ रहे हैं कि अपने प्राणों को शुद्ध करें। और हम अपने सामने प्रभु यीशु का लहू लाते हैं, हम ये स्वीकार कर रहे हैं कि हम योग्य नहीं हैं कि किसी भी आशीष के लिए जो आप हमें देंगे, परंतु क्योंकि वो मरा ताकि हम ये आशीषें प्राप्त करें, और हमें बताया कि सिंहासन के सामने हियाव से आए कि हमारी पहुंच इन आशीषों तक हो, प्रभु यीशु के अनुग्रह से होते हुए जो पृथ्वी पर आया इमैनुएल, और पापी का स्थान लिया, वो हम हो गया, ओ ताकि हम वो हो जाएं। प्रभु क्या ही अदल बदल है, प्रभु एक पाप मरा, नरक ये जीवन जो हमारा था, ये जानकर कि एक आया और उस जीवन को अपने ऊपर ले लिया और हमारे पापों को अपने जीवन के बहाए लहू से धो डाला, जो हमारे हृदय सोच भी सकें, ये उससे कहीं अधिक है प्रभु। और तब इस सब के अलावा उसने एक मार्ग बनाया कि हमारे अपराधों को ले जाए और उसके कोड़ों से हम चंगे हो जाएं। हम बहुत ही धन्यवादित हैं कि उसने प्रतिज्ञा दी है कि वो हमें भली प्रकार से रखेगा जबकि हमने उसकी सेवा की है। और अब आज रात्रि पिता, वहाँ बहुत सारे निवेदन हैं जो अपने उठाए हुए हाथों के साथ, हम जानते हैं कि तू इनमें से प्रत्येक पर का सम्मान करेगा, जानते हुए कि उनके हाथ के नीचे क्या है हृदय में। और प्रभु से मांगा कि आज रात्रि आप वचन को स्मरण करेंगे जैसा कि हम इसे पढ़ते हैं और इस पर मनन करते हैं, एक छोटे पाठ के समान, एक संडे स्कूल के समान, कि हम आज रात्रि छोड़ सकें। और ये हमारे हृदयों में था कि हम इस प्रकार अनुभव करें कि हम आपके अधिक समीप बाहर जाते समय होंगे बजाय कि जब हम अंदर आए थे। इसलिए हम यहाँ पर हैं कि ये राष्ट्र में बेदारी ला सकें, न जानते हुए कि ये कब आरंभ हो सकती है, परंतु इसी आशा के साथ आगे देख रहे हैं प्रभु। हम हर मानव यत्न को रख रहे हैं जो हम जानते हैं कि कैसे बेदारी को लाएं, जो पुरुष और स्त्री, लड़के और लड़कियों के बचने का ज्ञान जो मसीह का है। हम इस कलीसिया के लिए आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, इसके भले पास्टर के लिए और उसके परिवार के लिए, सारे डीकन, ट्रस्टी और सारे जो इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। हम उनके लिए धन्यवाद करते हैं जो साहस के साथ बराबर खड़े हैं। और प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर की आशीष इन पर ठहरे, हर प्रयास को आशीषित करें, होने पाए ये रुके प्रभु, जहां सारी घाटी यहां भीतर आ सके और विश्राम पाए, पिता इसे ग्रहण करें, होने पाए पास्टर की प्रार्थनाएं बीमारों के लिए उत्तर में आए, होने पाए उसकी सारी प्रार्थनाएं उद्धार के लिए सुनी जाएं, क्योंकि सारे जो अंदर जाते हैं सुसमाचार की पंक्ति में, होने पाए आपकी आशीषें उस पर आए, होने पाए कलीसिया में आत्मिक वरदान की कमी ना हो और आदर्श कलीसिया के समान स्थापित हो सारे समुदाय में, प्रभु इसे प्रदान करें। अब पिता, आज रात्रि चारपाइयों पर लेटे हैं जो बैठ नहीं सकते कि सभा का आनंद लें, ये जिनके पास ये सौभाग्य नहीं है और वे किसी प्रकार से यहाँ पर आज रात्रि जमा है, ओ परमेश्वर दया करें। मैं सोचता हूँ क्या होता यदि वो मेरी पत्नी होती या मेरा भाई या कोई जो रिश्तेदार जिसे मैं अच्छी प्रकार से जानता हूँ, ये किसी के। और पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर का अनुग्रह उसकी सामर्थ्य के साथ दिव्य छुटकारे में नीचे उतरे उनके लिए आज रात्रि, और इन्हें इन चरपाइयों से छुटकारा दिलाएं, होने पाए ये इन चरपाइयों में और अधिक समय ना रुकें आज रात्रि सभा से, होने पाए जब वे जाएं चरपाइयां पीछे छोड़ जाएं, होने पाए वो सामर्थ जिसने यीशु को मरुओं में से जीवित किया इनकी देहों को नए स्वास्थ्य में उठाए और फिर से सामर्थ्य में, हमारे पिता इसे प्रदान करें। अब हम जानते हैं कि आपने इसे करने की प्रतिज्ञा दी है, इसलिए वचनों में ये लिखा है, उनके ये चिन्ह होंगे वे जो विश्वास करेंगे, यदि वे अपने हाथ बीमार पर रख दें वे चंगे हो जाएंगे।
In commemoration of this commandment, God, I'm going to expect I have a letter from them that it was done, or I go in the name of Jesus Christ.
Only believe. अब पिता, इनकी पहुंच में वहां कोई ना होने पाए, जबकि दूसरे एक दूसरे तक पहुंच सकते हैं। मैं इस आज्ञा की स्मरणोत्सव में चलूंगा और मैं परमेश्वर, मैं उनसे ये आशा करने जा रहा हूँ कि उनसे एक पत्री लूँ कि ये हो गया था, क्योंकि मैं यीशु मसीह के नाम में जाता हूँ।
Oh.
Lord, I believe. Oh Lord,
प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, ओ प्रभु मैं विश्वास करता हूँ. सारी बातें संभव हैं प्रभु मैं विश्वास करता हूँ. प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ. सारी बातें संभव हैं प्रभु मैं विश्वास करता हूँ. उन दोनों महिलाओं में मांस बढ़ गया है, एक पर कैंसर है, और मैं अभी जल्द ही छोटी गवाही दे सकता हूँ यदि मुझे अपनी वार्तालाप थोड़ी छोटी करनी पड़े. घर छोड़ने से पहले अंतिम मामला जो घर छोड़ने से पहले था वो विचित्र मामला था. एक महिला थी और उसका नाम डायर है. वो थी, अब मैं उसका नाम भूल गया, ये डॉक्टर डायर था, लुविल से बाहर का एक जेम्स, डॉक्टर जेम्स डायर, मांस बढ़ने का विशेषज्ञ और आदि आदि लुविल में. उसकी पुत्री ने कलीसिया में पियानो बजाया ओपन डोर में, जिसका पास्टर डॉक्टर कोबल थे. एक ओ लंबा चौड़ा पुराना यहूदी आराधनालय, और वो व्यक्ति स्वयं चर्च ऑफ क्राइस्ट का था, नामधारी चर्च ऑफ क्राइस्ट, और सुसमाचार के विश्वास में मत परिवर्तक फुल गॉस्पल, एक बहुत ही भला मनुष्य. और उसने मेरी सभा में भी बजाया था जब मैं लुइविल में था, मेमोरियल सभागार में, और जो वहाँ घटित हुआ उसे देखकर अचंभित थी, और इस विषय में अपने पिता को बताने की कोशिश की. उसने कहा, ये बस मनोविज्ञान है, वे लोग वैसे ही बीमार हैं जैसे पहले कभी थे, और इसलिए वो इसका विश्वास नहीं करेगा. अंत में वो कलीसिया से अलग हो गई. उसने एक बैप्टिस्ट सेमिनरी के लड़के से विवाह कर लिया, और अंत में वो अपने विश्वास से अलग हो गया. वो प्रशिक्षण पाया हुआ सेवक था, और एक बैप्टिस्ट के समान उसने इसी प्रकार किया, और इसलिए वे अंत में हट गए और प्रचार करना नहीं चाहता था, और वे अपने लोगों में रॉकफोर्ड इलिनॉइस में चले गए. अंत में उसे जीन को कोई स्त्री रोग आरंभ हो गया. जांच के लिए वो अपने पिता के पास चली गई. वो वापस लुइविल जांच के लिए वापस आई, और जब उन्होंने किया, उन्होंने पाया जो कि चॉकलेट फोड़ा कहलाता है, ये स्त्री ग्रंथि में था. उसे हटाने में उसके पिता उस बड़े ऑपरेशन के साथ, और उसने उसके अंदर फोड़े को बखेर दिया, और अंत में और उन्होंने उसे कुछ गहरे एक्सरे दिए और इलाज, और इसलिए तब जब वो घर वापस गई, उसको निरंतर परेशानी होने लगी. लगभग एक वर्ष बाद वे उसे दूसरी जांच के लिए वापस लाए, और उन्होंने उसका पूरा गर्भाशय निकाल दिया. और जब वे ये कर रहे थे, पिता डॉक्टर ह्यूम के साथ थे, जो कि दक्षिण का एक विशेष डॉक्टर था. ऑपरेशन किया, और वो इतना बढ़ गया था कि कैंसर ने पहले ही मलदर को घेर लिया, इसलिए उन्होंने उसे कुछ समय के लिए वहीं छोड़ दिया. तब उसमें एक्सरे का इलाज फिर से किया, और उन्होंने पाया कि इससे कोई लाभ नहीं हो रहा है, इसलिए वे उसे वापस अस्पताल ले गए. वे उसे और अधिक जुलाब नहीं दे सके कि उसके पेट को खाली करें, इसलिए उन्होंने एनिमा लगाकर उसके पेट को साफ करने का यत्न किया, और उन्होंने पाया कि पानी उसके पेट में और नहीं जाएगा. इसलिए तब उसका पति, जो मेरे आलोचकों में से एक था, इसलिए अंत में वो वहाँ पर आया और एक पुस्तक उठाकर उसे पढ़ने लगा. और मेरा पुत्र यहाँ है, और भाई सॉथमैन, वो एक ट्रस्टी है, ये यहीं कहीं पर है, और वो आराधनालय की सीढ़ी पर लेट गया. क्यों? एक दो दिन से, जब तक मैं सभाओं में बाहर था, वापस आया, मैं उसे देखने गया, और उसने मुझे बताया, कहा अब उसे मालूम नहीं है कि उसे कैंसर है. कहा बस जाकर उससे बातें करें और उसके साथ प्रार्थना करें. और इसलिए जब मैंने उसे देखा, उसने कहा, भाई ब्रणम, उसने कहा, मेरा पति दिव्य चंगाई को स्वीकार करने जा रहा है, कहता है, क्योंकि मैं उससे मिल नहीं सका, इस पुस्तकों पर से होकर अब वो पृष्ठ के बाद पृष्ठ पढ़ता है हर दिन मेरे लिए किताबों में से एक. और मैंने कहा, जीन मैं ये समझता हूँ। मैंने कहा जीन अब हम बातें करें, देखें कि प्रभु क्या कहेगा। कमरे में कोई नहीं था, नर्स स्वयं चली गई थी और इसलिए हमने थोड़ी देर बातचीत की और थोड़ी देर बाद एक दर्शन आया। मैं वो लगभग 40 वर्ष की थी, अभी बाल सफेद नहीं हुए थे परंतु वो बहुत ही बड़ी और सफेदी। मैंने कहा जीन अब तुम सभाओं में रही हो? हाँ भाई ब्रनम। मैंने कहा इन्होंने तुमसे छिपा रखा है और मुझे बताया कि ये ना कहूँ परंतु तुम्हें कैंसर है। और मैंने कहा तुम्हारे पिता और या तुम्हारे पति ने कहा इस विषय में कुछ नहीं कहना परंतु तुम्हें कैंसर है जीन। परंतु अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ क्योंकि तुम सभाओं में रही हो, एक दर्शन कभी भी असफल नहीं हुआ। अब जीन मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, ये यहोवा यूं कहता है, समझे समझे। अब इस विषय में तुम निश्चिंत होना चाहती हो, देखिए कि ये प्रभु है ना कि विचार, आप ये देखें, समझे। और तब मैंने कहा तुम जीवित रहने वाली हो। वो बोली भाई मैडम मैं इस विषय में सारे समय संदेहजनक थी। और उसने कहा मेरे पिता डॉक्टर होने के नाते मैं ऐसे घर में पली बड़ी हूँ। कहा मैं संदेहजनक थी। कहा मैंने सोचा इस समय के चलते ये क्या चीज थी। हमने प्रार्थना की। अगले दिन उसके दूसरे दिन के बाद वे उसकी आंत कटवाने के लिए ले जा रहे थे। ये आप जानते हैं वे आंत काटते हैं और एक थैला एक और लगा देते हैं और तब मरीज बस जब तक वो नहीं मर जाता अंत में कैंसर उन्हें मार डालता है, पेट को थैले में खाली करते हैं। और जब उन्होंने उसे तैयार कर लिया और पहले ही तैयार थे और ऑपरेशन की मेज के लिए तैयार, उसे कुछ अजीब सा अनुभव हुआ और वे उसने नर्स को बुलाया कि आए और शौचालय जाने के लिए सहायता मांगी। और जब उसने किया वो बिल्कुल पूरी रीति से आम ढंग से कर सकी और उसका पति वो इसे मान नहीं सका और दूसरे दिन उन्होंने इसे नहीं लिया। दूसरे दिन सामान्यता तुरंत नाश्ते के बाद दूसरा पूरी रीति से सामान्य, इसलिए वो उसके डॉक्टर ने बुलाया। सिसकियों और रोने के बीच उसने कहा मैं बस समझ नहीं सकता, हम तो उसका यहाँ तक कि एक लक्षण भी ना पा सके, बिल्कुल नहीं, ये चला गया। अब मेरी मूल्यवान बहनों, मसीह का एक दास होने के समान मेरे यहाँ खड़े होने का कोई कारण नहीं है और मैं कुछ गलत कहूँ, क्योंकि उस दिन मेरा भी न्याय होना है और एक ढोंगी के समान निकाला जाऊं। और परमेश्वर के इस खुले वचन के साथ मैंने जीन के लिए और प्रार्थना नहीं की और इस ईमानदारी से अधिक नहीं जो मैंने आपके लिए किया। देखिए और बढ़कर उस छोटे स्थान पर गए ये जानते हुए कि विश्वास की प्रार्थना कर दी गई है, ये तय हो गया, ये वहाँ पर है, परमेश्वर के वचन ने ऐसा कहा है। देखिए विश्वास की प्रार्थना रोगी को बचा लेगी। अब वही परमेश्वर जिसने डॉक्टर डायरस की पुत्री को चंगा किया जो कि जीन है, मैं नहीं जानता कि अब उसका क्या नाम है, परंतु उस व्यक्ति ने निश्चय ही पूर्ण सुसमाचार को गले लगा लिया। कलीसिया में अंतिम उपदेश वो ठीक यहाँ बैठे हुए सारा का सारा अंदर स्वीकार कर रहा है, हमारे साथ प्रभु भोज ले रहा है और सारी चीजें। एक बैप्टिस्ट विद्यार्थी प्रभु के पास पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के लिए आया। अब ये दर्शाने जा रहा है कि परमेश्वर परमेश्वर ही बना रहता है। और डॉक्टर उसका पिता प्रेमी मनुष्य, परंतु उसने इस प्रकार की चीज कभी घटित होती हुई नहीं देखी थी। अब परमेश्वर के पास सारी चीजों के लिए समय है और विश्वास करने से आप दोनों विश्वासी हैं, इसलिए कभी कभी ये बातें भलाई के लिए घटित होती हैं। अब जानते हैं कि बाइबल ने कहा वे मिलकर भलाई के लिए कार्य करते हैं। अब अय्यूब को याद करें, उसकी सारी परीक्षाएं। अब ये परमेश्वर की ताड़ना अय्यूब को नहीं थी, परंतु ये परमेश्वर अपने दास का अनुमोदन करता है, इसलिए ये सब भलाई के लिए कार्य करता है। आप देखिए और तब अय्यूब की पुस्तक सारी पीढ़ियों के लिए लिखी गई एक गवाही के लिए। अब परमेश्वर ये भलाई के लिए कार्य कर रहा है। बस स्मरण रखें, मैंने अपने पूरे हृदय के साथ प्रार्थना की है, विश्वास की प्रार्थना। आप ये विश्वास करते हैं और ये वहाँ होगा, यही मामला होगा। बस बस परिणामों की प्रतीक्षा करें। जब सीधे संदेश में जाने के लिए बहुत से खड़े हैं, सांझ के लिए एक छोटा संदेश। और अब जरा स्मरण रखें कि वहाँ रमादा में वहाँ कुछ अच्छे वक्ता रमादा बेदारी में बोलने जा रहे हैं इस बार, वे व्यापारी लोग, इसलिए आप वहाँ रमादा में, इसलिए आप निश्चय ही सभा में होने का यत्न करें। इस सभा में भाई ओरो रॉबर्ट वहाँ होने जा रहे हैं उस रात्रि के भोज पर, और अब मैं एक प्रकार से टूसान का छोटा सा भाग मैं टूसान में करने जा रहा हूँ। एक हमारी वहाँ पर भी है अगले सोमवार रात्रि को। इस यदि आप वहाँ होते हैं आसपास, तो आप वहाँ भी आए और आपको होना होगा मेरे साथ थोड़ा समय कष्ट उठाना होगा, क्योंकि मुझे उस वाले में बोलना है। इसलिए आप आइए। यदि आप अगले मंगलवार अगले सोमवार रात्रि रमादा मोटल में रमादा इन टूसान में, और निस्संदेह हम सब जानते हैं फिनिक्स टूसान का बाहरी भाग है, हम सब ये जानते हैं। आप देखिए, इसलिए आइए और देखिए कि पहाड़ी लोग कैसे जीते हैं। अब आइए हम अपनी बाइबलों में जकरिया 14 निकालें, छठवां और सातवां अध्याय। मैं इसके लिए पढ़ना चाहता हूँ कि इससे एक छोटा संदर्भ विषय लूँ जो मैं लेना चाहता हूँ।
And it shall come to pass in that day that the light shall not be clear.
उस दिन कुछ उजियाला ना रहेगा, क्योंकि ज्योतिगण सिमट जाएंगे, और लगातार एक ही दिन होगा जिसे यहोवा ही जानता है। ना तो दिन होगा और ना रात होगी, परंतु सांझ के समय उजियाला होगा। अब मैं इसमें से लेना चाहता हूँ सांझ का संदेशवाहक एक के विषय के लिए। सांझ का संदेशवाहक, निसंदेह हमारे पास संदेशवाहक हो सकते हैं इस सारे दिन से होते हुए जिसके विषय में इसने बोला, परंतु एक सांझ का संदेश आ रहा है और आज रात्रि हम उसे देखना चाहते हैं, और इस प्रकार जैसे संडे स्कूल की विधि हो इस पर थोड़ी देर के लिए बात करते हैं। अब हम जानते हैं कि जकरिया यहाँ पर क्या बोल रहा है, क्योंकि उसने ये कहा एक दिन आएगा जिसे प्रभु का दिन माना जाएगा, न ही दिन न ही रात, परंतु सांझ को ये उजियाला होगा। अब यदि हम ये जानते हैं कि ये ना तो दिन ना ही रात, ये एक प्रकार से एक धुंधल का दिन होगा, एक प्रकार का कोहरे का दिन। और हम सब ये जानते हैं कि सभ्यता ने पूर्व से पश्चिम की ओर यात्रा की। सबसे पुरानी सभ्यता हमारी चीन की है, और सभ्यता पूर्व से पश्चिम की ओर चली क्योंकि ये सूर्य का अनुकरण करती है। और अब हमारे पास सब कुछ पश्चिमी किनारे पर है। यदि हम कुछ भी आगे बढ़ते हैं तो हम फिर से वापस पूर्व में हैं। देखिए, इसलिए हम मार्ग के अंत में हैं। हम एक कलीसिया के समान विश्वास करते हैं कि सुसमाचार पूर्ण होने के लगभग है। हम विश्वास करते हैं कि महान संदेशवाहक युगों से होते हुए इन अंत के दिनों में अंतिम सैकड़ों वर्षों में इन महान बातों के विषय में लड़े। विश्वास के द्वारा न्यायोचित लूथर, पवित्रीकरण वेस्ली के द्वारा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पेंतिकोस्तलों के द्वारा, हम विश्वास करते हैं कि वे मूल तत्व पूर्ण देह को बनाने जा रहे हैं, जैसे स्वाभाविक और आत्मिक। साधारणतः जब एक देह का जन्म होता है, पहली चीज क्या होती है? पहली चीज ये जल को लाता है, अगली चीज लहू है, और अगली चीज जीवन है। पहला यूहन्ना 5:7 ने कहा, वहाँ तीन हैं जो स्वर्ग में गवाही देते हैं, पिता, वो वचन और पवित्र आत्मा, और ये तीनों एक हैं, वे एक हैं। बिना पुत्र के आप पिता को नहीं पा सकते, बिना पवित्र आत्मा के आप पुत्र को नहीं पा सकते। देखिए, ये एक हैं, परंतु पृथ्वी पर तीन हैं जो गवाही देते हैं, जल, वो लहू और वो आत्मा, और ये एक में सहमत हैं। ये एक नहीं हैं, परंतु ये एक में सहमत हैं। समझे? अब आप बिना पवित्र हुए आप न्यायोचित ठहर सकते हैं, आप बिना पवित्र आत्मा के पवित्र हो सकते हैं। समझे? पवित्र आत्मा भीतरी उपस्थित आवास मसीह की सामर्थ का आत्मा में है। अब हम स्वाभाविक प्रतीक को देखते हैं जो आत्मिक है, इसलिए कलीसिया अपनी पूर्ण परिपक्वता में है। अब न्यायोचित, पवित्रीकरण, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, हम सात कलीसियाई कालों में होकर निकले हैं घर पर। ये सुंदरता का प्रतीक, और कभी किसी ने संयोगवश टेपों को सुना हो कलीसियाई युगों पर? अंतिम समय में मैंने युगों का वो श्याम पट पर चित्रण किया था, और स्वर्गीय पिता ये जानता है कि ये सत्य है। जब मैंने उस प्रेरणा में जो परमेश्वर से मिली, अपने सबसे अच्छे से जो कर सकता था पूरा किया, जो परमेश्वर मुझे देगा कि प्रभु का स्वर्गदूत, जिसे आप चित्र में देखते हैं, बहुतों ने चित्र देखा है क्या नहीं, वो ज्योति वो सीधी कमरे में आई, लगभग 300 या 400 लोगों के बीच दीवार के एक ओर चली गई इस प्रकार की ज्योति, और अपने से ही कलीसिया युगों का चित्र बनाया। हम सब वहाँ खड़े हुए देख रहे थे, इसे देखा, पहली कलीसियाई युग का चित्र खींचा, दूसरी, तीसरी और चौथी, पांचवी, छठवीं और सातवीं। अब कुछ लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं वे इसके गवाह हैं। यदि ऐसा है तो आप अपने हाथ उठाएं। बाइबल ने कहा, 2 या 3 गवाहों के मुख से। हर कोई वहाँ बैठा हुआ चिल्लाया और सब कुछ कर रहा है। मैंने कहा, वहाँ, अब आपने इसे देखना चाहा, हर कोई उसे सीधा सीधा देख सकता है। दिन के 11 बजे वो वहाँ दीवार पर खड़ा है और उन कलीसियाई कालों को चित्रित किया, बस किसमें अधिक आत्मा था, और तब अंधकार, ये दिखाने के लिए कि आत्मा को अवरुद्ध किया गया और अंधकार युगों से निकल गया और फिर से वापस आया, उसी प्रकार से जो मैंने चित्रित किया था, और हमारे पास इसके चित्र हैं और चीजें चित्रित की गईं, दीवार पर लटकी हैं, और वहाँ वो ठीक वैसा ही है। मेरे पास प्रभु का वो आत्मा होना चाहिए जो संतुष्ट था कि वो पूरा था, क्योंकि वो वापस आया और इसे प्रमाणित किया कि वो ठीक था। और हम लुद्विकिया कलीसियाई काल में रह रहे हैं, धनी कलीसियाई काल, और वे सोचते हैं कि उन्हें किसी वस्तु की घटी नहीं है, और नहीं जानते कि वे नंगे हैं, बेचारे, अंधे, और ये नहीं जानते। देखिए, अब ये सारे प्रतीक, अब वही सूरज जो चमकता है, पूर्व में उदय होता है, वही सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। अब हम जरा एक मिनट संदेश की भूमिका के लिए रुकें। हम जानते हैं कि सूर्य, वो SUN, सूर्य परिवार, परंतु परमेश्वर का SON, परमेश्वर का, कि चमक में नीचे उतर कर आया और परमेश्वर की ज्योति में, पूर्व में। और अब हमारे पास 2000 वर्ष थे प्रभु के द्वारा विचारे गए। उसने कहा, ऐसा समय होगा वो ना तो दिन ना ही रात होगी, एक धुंधल का सा दिन होगा, परंतु सांझ के समय उजियाला होगा। अब यदि आप ध्यान दें कि पवित्र आत्मा पूर्व के लोगों पर पहले उतरा, तब हमारे पास समय था कि कलीसिया के सदस्य बने और छोटी बातों के सिरों को समेटें और छोटे छोटे कारणों पे लड़ें, परंतु तब सांझ के समय में पश्चिम गोलार्ध में ये उजियाला होगा। और अब हम उस समय में हैं। सभ्यता एक बड़ी दरार के समान पूर्व से आती है, सारे पापों को सारे समय समेटती हुई, जैसा कि ये आती है, और ये पश्चिमी किनारे पर ध्वनि के धमाके के समान, और वो पीछे गिर पड़ी, और सबसे भ्रष्ट स्थान जो मैं जानता हूँ पश्चिमी किनारा है। कोई भी चीज जो आप सोचना चाहते हैं उनके पास है, पाप है, भ्रष्टाचार, तलाक, विवाह, हॉलीवुड, ठीक नरक का छेद, ये बिल्कुल ठीक बात है। मैं बाइबल की वास्तविक पवित्रता में विश्वास करता हूँ। मैं इस मिलावट और सड़ाहट की चीजों का विश्वास नहीं करता जो हमारे लोगों के सामने एक उदाहरण रखते हैं, हॉलीवुड कहलाते हैं, और मैं सदा से इसके विरोध में रहा हूँ, और मैं सोचता हूँ वो पुरुष जिसमें परमेश्वर का आत्मा उसमें है इसके विरोध में होगा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा गवाही देता है उसके लिए, ये गलत है। अब मैं सोचता हूँ कि ये एक है, हम पेरिस जाया करते थे कि नंगी मॉडलों को लाएं कि अपनी स्त्रियों को नंगा करें, अब पेरिस यहाँ आता है कि हमारे वालों को लें, समझे। हॉलीवुड संसार की अगुवाई कर रहा है, और नंगे चलन जो आज हमारे पास हैं फ्रांस से आगे हैं। जरा इस पर सोचें, वे पियक्कड़, झगड़ालू, आचरणहीन स्थान, और फिर भी हॉलीवुड कुल मिलाकर पराजित करता है, और हमारे सारे टेलीविजन और सारी चीजें उस पर बिना किसी रोक टोक के हैं, बस गंदे चुटकुले और सड़ी मिलावट हर चीज में चली गई, और लोग और शैतान हमें हमारे बालकों को सिनेमा नहीं जाने देते थे वर्षों पहले। हम पहले के पेंतिकोस्तल, परंतु अब शैतान घुस आया है और सीधे इसे घर में रख दिया हमारे ऊपर, आप समझे। इस प्रकार से वो सिनेमा को हमारे घर के अंदर ले आया अब, और ये ऐसी एक भयानक बात है, ये सोचते हुए कि संसार इस भ्रष्टाचार में चला गया, क्योंकि ये सारा कुली कबाड़ आप देखिए और इस प्रकार से तैरा सभ्यता के साथ आ रहा है। परंतु सारे समय मैं इन्हीं किन्हीं दिनों में प्रचार करने जा रहा हूँ, प्रभु ने चाहा कुछ ही दिनों में उल्टी गिनती पर। आप जानते हैं, मैं जानता हूँ आपने चक्कर मारा, और इस प्रकार से हम बस देखते हैं वहाँ क्या घटित हो रहा है। परमेश्वर अपनी कलीसिया के साथ कुछ करने योग्य भी रहा है सारे समय, आप भी देखिए, जबकि ये चीजें घटित हो रही हैं, और हम अब अंत के समय में हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रत्येक युग का एक संदेश और संदेश वाहक रहा है। परमेश्वर ने इसे देखा। प्रत्येक, यहाँ तक कि कलीसिया युगों में हम पाते हैं कि प्रत्येक के पास एक संदेश वाहक था और प्रत्येक अपने युग में जीवित रहा और दूसरा वाला भीतर आया और वह चला गया और दूसरा वाला भीतर आया और सातवीं कलीसिया युग तक आए। प्रत्येक सितारा, कलीसिया का प्रत्येक दूत, प्रत्येक संदेश वाहक, और हम अंतिम कलीसियाई युग में पाते हैं। यहाँ प्रकाशित वाक्य 10 में वहाँ एक तुरही की आवाज है और वहाँ सात आवाजें बोलती हैं। उनकी लिखने की आज्ञा नहीं दी गई, परंतु ये पुस्तक के पीछे मोहर बंद हो गई। सात मोहरें पुस्तक के पीछे की ओर थी। पुस्तक के लिखे जाने के पश्चात ये वहाँ पीछे सात मोहरों से मोहर बंद कर दी गई। अब कोई नहीं जानता कि वे क्या हैं, परंतु ये कहा गया सातवें दूत के दिनों में उसके संदेश प्रचार करने के समय ये पृथ्वी का दूत है। अब क्योंकि ये स्वर्गदूत स्वर्ग से नीचे उतरा और ये पृथ्वी पर था। दूत एक संदेश वाहक, उस युग का संदेश वाहक, और तब हम ध्यान देते हैं कि वो अपना रखता है, उसके सिर पर मेघ धनुष था और अपना हाथ उठाया और अपनी शपथ खाकर जो सदा तक जीवित है कि समय और ना होगा। अब ये सात आवाजें बोली, सात गर्जनों ने अपनी आवाजें निकाली और उन्हें उसने बताया मत लिखो, परंतु इसे मोहर बंद कर दो। और हम पाते हैं कि ये पुस्तक के पीछे थी। परंतु जब सातवें दूत ने अपना संदेश पूरा कर दिया अपनी भविष्यवाणी के दिनों को, तब परमेश्वर का गुप्त मनोरथ समाप्त हो जाना चाहिए। हर कोई जानता है कि बाइबल यह कहती है। परमेश्वर का भेद, परमेश्वर क्या है, परमेश्वर कौन है, और सब इस विषय में बपतिस्मा और चीजों में जो तय हो जानी चाहिए। उस दिन में प्रत्येक संदेश वाहक का अपना एक संदेश था और वो संदेश और उस युग का संदेश वाहक। और ये बहुत ही ध्यान देने योग्य है कि प्रत्येक संदेश वाहक हम उन्हें कलीसिया कालों में भी पाते हैं, और आज रात्रि हम वापस पुराने नियम में जाएंगे और पाते हैं कि ये वही चीज है जो परमेश्वर ने उस युग के संदेश वाहक समय के अंत में भेजे। सदा अंत में, आरंभ में कभी नहीं, अंत में। अब जैसे लूथर का युग धूमिल हुआ तब वेस्ली आया, और जब वेस्ली का पवित्रीकरण धूमिल हुआ पेंतिकोस्तल युग भीतर आया। समझे, ये सदा संदेश वाहक नया संदेश पुराने के अंत में खोलता है। ये प्रत्येक युग जो समाप्त हुआ, हम ये जानते हैं कि ये सत्य है। बाइबल में होते हुए हर बार ये दोहराया गया। हम इस पवित्र वचनों में पाते हैं, इस सारे में होते हुए, कि पुराने युग की समाप्ति पर और नया वाला आ रहा है। वो युग धूमिल हो गया और नया युग आता है। परमेश्वर संदेश वाहक भेजता है, और जैसा कि सदा सदा हर बार संदेश वाहक के आने पर ये सदा वचन पर वापसी की पुकार होती है, कभी असफल नहीं हुआ। स्मरण रहे, ये यीशु मसीह का पूर्ण प्रकाशन है। इसमें कुछ भी मिलाया नहीं जा सकता या इसमें से निकाला। ये यीशु मसीह का पूरा प्रकाशन है, और केवल एक ही विधि है जो हम कभी निश्चित हो सकते हैं। यदि कोई चीज हमारे बीच में उठती है जो इस प्रकाशन के विरोध में है, तो ये गलत है। समझे, ये वचन पर वापस आओ, और सदा वापस बुला रहा है। और वचन में हर मामले में परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ता का प्रयोग किया कि उस युग को वापस बुलाए, बनाया नहीं, एक बार भी नहीं चूका। उसने सदा एक भविष्यद्वक्ता को भेजा, और अब वो क्यों करता है? क्योंकि ये बाइबल कहती है, ये भविष्यद्वक्ता है जिसके पास परमेश्वर का वचन आता है, वचन को प्रकट करने वाला। अब मैं आशा करता हूँ कि मुझे गलत नहीं समझा गया। समझे, मेरा अर्थ ये नहीं है कि गलत समझा जाए, परंतु मेरा अर्थ ईमानदार रहने और बुलाहट के प्रति विश्वसनीय रहने का है। हम यही होना चाहते हैं। अब परमेश्वर सदा एक भविष्यद्वक्ता का प्रयोग करता है, एक मनुष्य का झुंड। आपके पास विभिन्न विचार हैं। देखिए, प्रत्येक मनुष्य, दो मनुष्य, उसके पास पृथ्वी पर दो प्रधान भविष्यद्वक्ता एक समय में नहीं रहे। वो एक को लेता है ताकि दूसरा वाला उसका स्थान ले, दूसरे दिन के लिए दूसरा संदेश। उसके पास कभी भी दो नहीं रहे। उसके पास एक समय में एक, और अनंत परमेश्वर कभी भी अपनी योजना नहीं बदलता। उसे सदा वैसे ही स्थिर रहना चाहिए जैसा उसने आरंभ किया है। यही कारण है कि हम उसमें अपना विश्वास रखते हैं, उसमें जो वो कहता है। वो बदल नहीं सकता। यदि वो एक मनुष्य को उसके विश्वास पर जो परमेश्वर पर है उसके आधार पर उसे बचाता है, तो अगला मनुष्य उसी आधार पर बचाया जाएगा। जब परमेश्वर ने एक स्थान बनाया जहां वो अपनी सृष्टि के साथ संगति कर सकता है, आदम ने स्वयं अपना मार्ग बनाने का यत्न किया और अंजीर के पत्तों से अपने और अपनी पत्नी के लिए वस्त्र बनाए। परमेश्वर ने ये अस्वीकार कर दिया और परमेश्वर ने निर्णय लिया किस योजना पर या किस आधार पर वो मनुष्य से मिलेगा और उसके साथ संगति करेगा, और वो बहाया हुआ लहू, और उसने इसे कभी नहीं बदला। अब एक जैसे मेथोडिस्ट से बैप्टिस्ट हम एक दूसरे से हाथ मिला सकते हैं, परंतु मेथोडिस्ट और बैप्टिस्ट के बीच के आधार हमारे बीच कोई चीज सामान्य नहीं है। मैं बैप्टिस्टों के लिए जोर लगा रहा हूं और आप मेथोडिस्ट के लिए जोर लगा रहे हैं, या इसका उल्टा। परंतु वहां एक आधार है जहां पर सारे विश्वासी मिल सकते हैं, वो बहाए हुए लहू के नीचे। यही जहां हम मिलते हैं और सारी चीजें एक और कर देते हैं। इसलिए हम सब एक संस्था के अधीन नहीं आ सकते, हम ये नहीं कर सकते। ये छोटी संस्थाएं, मैं सोचता हूं कुल मिलाकर परमेश्वर इनमें रहा, परंतु लोग, क्योंकि हम भिन्न हैं, हर व्यक्ति अलग देखता है, प्रत्येक व्यक्ति अलग देखता है। दो मस्तिष्क बिल्कुल ठीक एक से नहीं होते, कोई दो लोग एक से नहीं होते। वे दावा करते हैं कोई नाक नहीं, कोई दो अंगूठे की छापे। देखिए, हम लोग भिन्न बने हैं कि इस तरह से हमारे भिन्न झुंड होने चाहिए, परंतु परमेश्वर सदा व्यक्तिगत के साथ कार्य करता है। वो आपको इसलिए नहीं बचाता क्योंकि आप मेथोडिस्ट हैं, वो आपको इसलिए नहीं बचाता कि आप बैप्टिस्ट हैं, वो आपको इसलिए नहीं बचाता क्योंकि आप पेंटिकॉस्टल हैं, वो आपको इसलिए बचाता है क्योंकि उसने आपसे व्यक्तिगत व्यवहार किया है और आप उसी आधार पर बचे हैं कि आपने इसे स्वीकार किया है। इसलिए परमेश्वर आपके साथ व्यवहार कर सका। वो आपके साथ उसकी कलीसिया के अनुक्रम के साथ व्यवहार नहीं करता, वो आपसे एक व्यक्तिगत के समान व्यवहार करता है। इसलिए जब परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता भेजे, नियम के उसके संदेशवाहक, उसने एक व्यक्ति से बात की और उस व्यक्ति को संदेश लाना था, दूसरे उससे अलग होकर हर कहीं चले गए, उसी संदेश को लाए, परंतु वहाँ एक मुख्यालय होना था। परमेश्वर के पास ये सदा रहा है। मैं धन्यवादित हूँ आज रात्रि ये उसके पास है, ये पवित्र आत्मा है, निसंदेह हम सब जानते हैं। अब कोई झुंड नहीं, परंतु पवित्र आत्मा परमेश्वर का मुख्यालय है, ये इस घड़ी का परमेश्वर का संदेशवाहक। अब ये भविष्यद्वक्ता है जिसके पास सदा वचन आता है। यदि वे वचन के सच्चे भविष्यद्वक्ता है, परमेश्वर अपना वचन उस भविष्यद्वक्ता के द्वारा प्रमाणित करता है। अब बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता हुए हैं, ये लोग सारे युगों में होते हुए हमारे पास हैं। हम पुराने नियम में वापस जाते हैं, उन्हें उठते हुए देखते हैं और प्रभु के नाम में बोलते हैं, और ये सही नहीं था। परमेश्वर को इससे कुछ मतलब नहीं, वो सिवाय अपने वचन को छोड़ कभी भी कुछ और प्रमाणित नहीं करता। जो भी है, वो अपना काम इस प्रकार से नहीं चलाएगा, समझे? आप बस स्मरण रखें, परमेश्वर केवल अपना वचन प्रमाणित करता है और केवल एक सच्चा भविष्यद्वक्ता है, और केवल एक ही विधि है कि आप बता सकते हैं कि वो सच्चा है या नहीं, वो वचन के द्वारा। उसे जांचने की यही विधि है। अब यदि आप ध्यान दें, उन दिनों के समान जब मिकाया वहाँ 400 इब्रानी भविष्यद्वक्ता आहाब और यहोशापात के सामने और कहा, यहोवा यूं कहता है, जाओ और सफल हो। सैद्धांतिक रूप में वे सही थे। तब मिकाया को दृश्य पर बुलाया गया, वो जिससे सब घृणा करते थे। अब ये ऐसा प्रतीत होता है यदि 400, मैं मेरा अर्थ बाल के नबी नहीं, इब्रानी भविष्यद्वक्ता, एक मत के साथ खड़े हुए और बोले, रमोत गिलाद पर चढ़ाई कर, प्रभु तुझे आशीषित करेगा और तू सफल होगा। और वे पुरुष ढोंगी नहीं थे, वे पूरी रीति से प्रेरणा में थे, परंतु उनका तो फिर क्यों ये छोटा सा जन मिकाया नाम का क्यों आएगा, जो यमला का पुत्र था, वापस आया और उनके विपरीत भविष्यवाणी की। अब ये विश्वास किया, ये दृढ़ विश्वास को लेता है, समझे? परंतु उसने कैसे जाना कि वो सही था? यदि आप वहाँ खड़े हुए होते, आप कैसे ये जानते? केवल एक ही विधि जो आप कर सकते, मनुष्य जो कहता है वो लेते और इसकी वचन से तुलना करते, समझे? अब मिकाया ठीक वचन पर था, क्योंकि एलिया वो महान भविष्यद्वक्ता जिसके पास प्रभु का वचन था, उसने आहाब और इजाबेल को श्रापित किया और सब, समझे? और कैसे परमेश्वर पलटकर और जो श्रापित था उसे आशीषित करे? देखिए, इसलिए ये काम नहीं कर सकता। अब हम पाते हैं कि परमेश्वर अपना वचन प्रमाणित करता है, भविष्यद्वक्ता का वचन। यदि वो भविष्यद्वक्ता है, तब ये वो वचन के अनुसार बोल रहा है। एक स्थान में बाइबल ने कहा यदि वे व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं के अनुसार ना बोले, तो फिर उनमें उजियाला नहीं। तब पुकारें, तब ये संदेश वाहक बुलाए हुओं को बाहर बुलाता है। वो परमेश्वर के वचन के द्वारा सही है, सिद्ध करता है कि वो सही है। ध्यान दें। अब हम कुछ चरित्रों को लेंगे और सुनेंगे। बाढ़ के पहले अंत समय में नूह परमेश्वर का गवाह था। अब देखिए, उसका संदेश कितना विरोधात्मक था उस बाढ़ के पहले के संसार में। क्यों? वो मनुष्य एक पागल मनुष्य माना गया। क्यों? उसका परंतु फिर भी उसके पास प्रभु का सही वचन था। परमेश्वर बोला था कि वो पाप को सहन नहीं कर सका, इसलिए वो जब लोगों ने पाप करना आरंभ कर दिया, तब परमेश्वर नीचे उतर आया और नूह ने अंत समय का संदेश प्रचार किया। ये कब था? अंत समय के थोड़ा पहले ये संदेशवाहक उठा। परमेश्वर ने ये भविष्यवक्ता भेजा अंत समय के लिए संदेश के साथ, और उस पर हंसा गया, उपहास उड़ाया गया और मजे लिए गए। उस पर कोई विश्वास नहीं करेगा, परंतु उसके पास अंत समय का संदेश था। अब वे सब जिन्होंने विश्वास नहीं किया दोषी ठहरे, और वो जिसने संदेश का विश्वास किया बच गया था। परमेश्वर ने उन्हें जीवन दिया और वे बच गए थे, और जिसने विश्वास नहीं किया वो नष्ट हो गया। अब मैं कुछ प्रतीकात्मक कर रहा हूँ। ध्यान दें, परमेश्वर कैसे, उसने ये तीन बार किया, और तीन परमेश्वर का सिद्ध अंक है। परमेश्वर तीन में सिद्ध है, जैसे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, और न्यायोचित, पवित्रीकरण, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। वो सिद्ध हुआ क्योंकि तीन उसकी सिद्धता है, पांच अनुग्रह का अंक है, सात आराधना का अंक है, बारह चालीस सताव का अंक है, और पचास जुबली है आराधना। पेंतिकोस्त का अर्थ पचास, और 40 दिनों मूसा की परीक्षा हुई, 40 दिनों मसीह का परीक्षा हुई। आप देखिए, और ये सारे प्रतीक अब परमेश्वर तीन में सिद्ध है। वहाँ तीन विनाश हैं, उनमें से एक जब नूह नाव में गया, दूसरी बार लूत सादोम से बाहर निकला। ध्यान दें, यीशु ने उनका उल्लेख किया है, जैसे नूह के दिनों में था और लूत के दिनों में था, वैसे ही ये मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में होगा। ध्यान दें, एक भीतर गया, दूसरा वाला बाहर आया, अगला वाला ऊपर जाता है। ओह, समझे? ओह, ये भीतर जाता है, बाहर आता है, ऊपर जाता। अब ये प्रभु का अनुक्रम है। देखिए, यीशु ने उन्हें दो भविष्यद्वक्ताओं का उल्लेख दिया, जैसा नूह के दिनों में था, देखिए, और जैसा ये लूत के दिनों में था। अब्राहम एक भविष्यद्वक्ता, जैसा ये था ऐसा ही मनुष्य के पुत्र के आगमन पर होगा। देखिए, पीछे का उल्लेख दे रहा है उन्हें। अब मूसा दूसरा भविष्यद्वक्ता, मिस्री युग के अंत में हम पाते हैं, जब परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ाने जा रहा था और मिस्रियों ने उनको बुरी रीति से सताया और उन पर काम लेने वाले ठहराए, उन पर आज्ञा चलाने वाले, बल्कि और इस प्रकार तब उनके नष्ट होने से पहले परमेश्वर जैसे सदा वो भविष्यद्वक्ता को प्रभु के वचन के साथ भेजता है। स्मरण रखें, भविष्यद्वक्ता उसी के साथ प्रमाणित हो रहा है जो परमेश्वर ने सैकड़ों वर्षों पहले, 400 कुछ वर्षों पहले इसके अब्राहम से प्रतिज्ञा की थी कि उसका वंश एक अपरिचित देश में परदेशी रहेगा, परंतु वो उन्हें वहां से सामर्थी हाथ के द्वारा निकाल लाएगा। आप जानते हैं, जलती हुई झाड़ी के पास जब मूसा ने परमेश्वर से भेंट की और उसने उससे कहा, मैंने अपने लोगों का चिल्लाना सुना है, मैंने उनकी दुर्दशा देखी है, और मैं अपनी वाचा स्मरण करता हूँ, अपने वचन को स्मरण कर रहा है। स्मरण रहे, उसे अब भी अपना वचन याद है। समझे? वो असफल नहीं होता, उसे हर बार वैसा ही करना है। कारण कि मैं ये बातें कह रहा हूँ ताकि हम आपके विचारों में इसे वापस ले आएं और सोचें। आप लोग भी जो बीमार रहे, आप ध्यान दें, मैंने कहा है बीमार रहे। अब ध्यान दें, अब आप सब लोगों को ये बात याद रखनी चाहिए कि परमेश्वर बदल नहीं सकता, वो ना बदलने वाला परमेश्वर है। समय बदलते हैं, लोग बदलते हैं, परमेश्वर अनंत है, वो नहीं बदल सकता। उसका उसे एक सा ही रहना चाहिए, कल आज सर्वदा, उसे सदा एक सा रहना चाहिए, और यदि हम इसका ये विश्वास करते हैं कि ये परमेश्वर का वचन है, तो हम अपना विश्वास किसी भी चीज पर कर सकते हैं जो उसने कही, समझे। अब आप वहाँ देखिए संदेश कैसे आता है, वो कैसे अपना संदेश भेजता है, वो इसे बदल नहीं सकता। उसने सदा यही किया, उसने सदा एक सा ही बना रहना है, इसी प्रकार से वो सदा यही करेगा। अब स्मरण रखें, कब वो ये करता है, नष्ट करने से जरा सा पहले, युग के अंत पर, यही जब वो अपना संदेश अपने लोगों को बाहर निकालने के लिए भेजता है, वे सदा उसमें भ्रमित हो जाते हैं और यहाँ वे आते हैं। अब मूसा के दिनों में विश्वासी बचा लिए गए थे, अविश्वासी नष्ट हो गए। वे जिन्होंने मूसा का विश्वास किया कि ये परमेश्वर की ओर से संदेश है, अब ये उन्होंने तब तक नहीं किया जब तक मूसा परमेश्वर की ओर से प्रमाणित नहीं हुआ और सिद्ध किया कि परमेश्वर का वचन उसके साथ था जिसने उसे भविष्यद्वक्ता बनाया। वो वहाँ से बाहर आया और वो बोला, कल लगभग इसी समय तुम देखोगे कि ऐसा ऐसा घटित हुआ। कल वो घटित हो गया। बस यही था, परमेश्वर का कोई भी सच्चा भविष्यद्वक्ता जो प्रभु के नाम से बोलता है, प्रभु उसे करेगा। और वो घटित होगा कि ऐसा ऐसा घटित होगा, मैं फिरौन के पास जा रहा हूँ, परंतु वो कठोर हो जाएगा, उसके पास कठोर हृदय है, वो कहेगा कि वो हमें जाने दे, परंतु वो ये नहीं करेगा और ये घटित हुआ, समझे। क्यों? तब लोग जान गए थे मनुष्य परमेश्वर की ओर से भेजा गया है, और तब उन्होंने देखना आरंभ किया कि परमेश्वर ने उसे आशीषित किया है और उन्होंने उसका सम्मान किया, और जब उन्होंने किया महान चीजें घटित हुई, और जो लोग हंसे और मजे लिए और उसका संदेश स्वीकार नहीं करेंगे, वे बाकी अविश्वासियों के साथ नष्ट हो गए। परंतु विश्वासी बाहर निकले और प्रतिज्ञा के देश में चले गए, वे संदेश वाहक के अभिषिक्त संदेश की अधीनता में चले गए। ये एक छुटकारे का संदेश था जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की थी, वो अपने लोगों को उस देश में ले आएगा जहां दूध और शहद बहता है, और ये घटित हुआ क्योंकि ये परमेश्वर ने पहले ही कह दिया था, और मूसा आया और उस दिन का प्रमाणित संदेश वाहक था। अब ये हमें सुंदर रीति से स्पष्ट हो गया है, ठीक है। तब हम पाते हैं कि मूसा सही प्रमाणित हुआ था, और तब युग के बदलाव पर समय आ गया, व्यवस्था और अनुग्रह के बीच का एक समय आना ही था कि ये बताया गया मसीहा आने वाला था। हम पाते हैं कि एक समय की लोगों ने व्यवस्था को तोड़ मरोड़ दिया, किसी एक चीज के झुंड की अधीनता में उसे बना दिया, और उसमें मनुष्य की सब प्रकार की रीतियां थीं, उन्होंने उसमें घुसा दी थी। समय के बदलने में यीशु आया, दूसरा भविष्यद्वक्ता, परमेश्वर भविष्यद्वक्ता। अब आप कहते हैं वो भविष्यद्वक्ता नहीं था, बाइबल ने कहा कि वो था। तुम्हारा प्रभु परमेश्वर एक भविष्यद्वक्ता मेरे समान उठा खड़ा करेगा, वो परमेश्वर भविष्यद्वक्ता था, समय के बदलाव पर, व्यवस्था और अनुग्रह के बीच, जो उसने इन सारे वर्षों में होते हुए बोला। उसके बाद जब उसने व्यवस्था मूसा को दे दी थी, तब समय के बदलाव पर जब उसने कहा ये हो जाएगा, तब वो वापस अनुग्रह पर आया और उसने एक भविष्यद्वक्ता को समय की भविष्यवाणी करने के लिए भेजा। अब विश्वासी लोग, उसने उन्हें जमा किया, उसके दिनों में अविश्वासी नष्ट हो गए, सब जिन्होंने उस पर विश्वास किया बच गए, सब जिन्होंने विश्वास नहीं किया उसका संदेश नष्ट हो गया था। ठीक यही जो वहाँ नूह के दिनों में घटित हुआ था, यही जो लूत के दिनों में घटित हुआ था, यही जो और दिनों में घटित हुआ, मूसा के दिनों में, यही जो यीशु मसीह के दिनों में घटित हुआ, क्योंकि उन्होंने संदेश को तुच्छ जाना और नष्ट हो गए, और वे जिन्होंने संदेश का विश्वास किया नष्ट थे, यानी बच गए थे। अब तब कलीसिया का विधान आता है। हम नूह के समय में जी चुके, बाढ़ के पहले, हम व्यवस्था के विधान में आते हैं, तब कलीसिया के अनुग्रह विधान में, और अब कलीसिया का विधान समाप्त हो रहा है। हम सब ये बात जानते हैं। अब यदि परमेश्वर ने उस विधान में ऐसा ऐसा किया, उन दो दूसरे विधानों में उसे वैसा ही बना रहना है और वैसा ही इस विधान में करना है, क्योंकि उसने कहा वो ये करेगा। मैं कुछ ही मिनटों में सिद्ध करूंगा वचन के द्वारा कि उसने ये कहा और वो ये करेगा। अब वो अपनी योजना नहीं बदल सकता, वो परमेश्वर है। ध्यान दें, उसने उन विधानों में क्या किया। अब हम कलीसिया के विधान के अंत समय में आते हैं। यही जो मैं आज रात्रि पढ़ता हूँ, सांझ के समय उजियाला होगा। हमारे पास बहुत सारा धुंधल का समय था, परंतु एक उजियाला आएगा। वही पुत्र जो आया और उसने विधान बदला, फिर आया। ये पृथ्वी से महिमा तक जाने वाला है। हम उसमें जाएंगे। एक बार हम उसमें गए, दूसरी बार हम बाहर आए, और इस बार हम ऊपर जा रहे हैं। समझे? ठीक है, अंदर बाहर ऊपर, हम अंत के समय पर आ रहे हैं। और हम केवल आ ही नहीं रहे, हम पहले ही पहुंच चुके हैं। हम अंत के समय में हैं। परमेश्वर इस अंत के समय में क्या पाता है? परमेश्वर इस समय में ठीक वही पाता है जो उसने दूसरे समयों में पाया। अविश्वास, वो सदा वही रहा है। वो जब वो आता है, वो अविश्वास पाता है। वो पाता है जो योजना उसने लोगों के लिए रखी। पीछे नूह के समय में यदि वे उसके अध्यादेश के बाद जीवित रहते, बलिदान चढ़ाते, वे इससे अलग हो जाते। जब वो आता है, वो ये पाता है ये चीजें गलत हो रही हैं। वही चीजें जबकि वो पृथ्वी पर आया, उसने लोगों और फरीसियों को पाया। और इसी प्रकार व्यवस्था के बाद वे क्या कर रहे थे? उनमें से कोई निष्ठा बाकी नहीं, बस आगे बढ़ रहे हैं, पुरानी विधि से उसमें लुढ़क रहे हैं। और जब तक वे कलीसिया में बने रहे, और बस उन्हें इसी की आवश्यकता थी, और यही जो उसने पाया, और यही जो उसने फिर से पाया, उसने वही चीज पाई। लोग नहीं बदले। इसलिए यदि वो अपनी योजना भेजता है और लोग इसका अविश्वास करते हैं और वे नष्ट हो गए, उन्होंने इसका विश्वास किया और जीवित रहे, अब उन दोनों पर इस समय भी ये वैसा ही होने जा रहा है। इसे वैसा ही होना है। नहीं, संदेश वाहक के लिए ये सदा एक संघर्ष रहा है कि पुराने से अलग कर नए में। ये सदा एक संघर्ष रहा है संदेश वाहक के लिए भीतर आना और पुराने को नए से अलग करना। यद्यपि संदेश को सदा वचन के अनुसार होना चाहिए, अब प्रत्येक ने दूसरे के आने के लिए पहले से बताया। अब चलिए उदाहरण के लिए लेते हैं, यीशु, उसके लिए इसमें आना कितना कठिन था और संदेश को बदलना व्यवस्था से अनुग्रह में। फिर बाइबल ने कहा ये इसी प्रकार से होगा। एक मसीहा आएगा और प्रतिदिन का बलिदान हटा दिया जाएगा। और हम जानते हैं कि इसकी भविष्यवाणी नबियों के द्वारा की गई थी। उसके लिए ये करना कितनी महान बात थी। परंतु हम पाते हैं कि उसने ये किया, और वो उसने ये किया क्योंकि वचन ने कहा, और उस दिन के विश्वासियों ने, कहलाने वाले विश्वासी, उसके साथ बिल्कुल भी सहमत नहीं होंगे। उन फरीसियों और सदूकियों को देखें, उनके पास उनके अपने रीति रिवाज थे, और कोई भी उन्हें इस पर से नहीं हिला सकता था। वो जिसका उन्होंने विश्वास किया, उनकी माताओं ने ये विश्वास किया, उनके पिताओं ने ये विश्वास किया, उनके दादा और दादियों ने ये विश्वास किया कि और मूसा ने ऐसा कहा। परंतु वही मूसा जिसने व्यवस्था दी, वही मूसा था जिसने कहा कि वो आएगा, और वे उसे पहचानने में असफल रहे क्योंकि उनके पास परमेश्वर का सच्चा वचन होना ही था उन रीति रिवाजों में, और उसके मुख्य सिद्धांतों को छोड़ दिया। इसे इसी प्रकार होना था। ध्यान दें, प्रत्येक ने पहले से बताया कि दूसरा वाला आएगा। प्रत्येक संदेशवाहक संदेश के बाद पहले से बताता है ये आएगा। अब परंतु लोग सदा उस दिन के संदेश को लेते हैं जो उनके पास होता था, जो उन्होंने इसे तय किया। चलिए इसका विश्लेषण करें, घर से थोड़ा सा आगे आइए, लूथर को देखें। जब लूथर ने विश्वास के द्वारा न्यायोचित प्रचार किया, वो संदेशवाहक था, उस कलीसियाई युग का दूत। ठीक है, सार्दिस कलीसियाई का युग। अब ध्यान दें, जब उसने ये प्रचार किया, उसने लूथरन को एक अनुक्रम में तय कर दिया। अब तब यहाँ लूथर उसे फैला रहा है। और जब वेस्ली आया, फिलेडेल्फिया कलीसिया युग पवित्रीकरण के संदेश के साथ, क्यों? लूथर को इसे देखने में कठिनाई हो रही थी। वे लूथरन इसका विश्वास नहीं करेंगे। और तब जब वेस्ली ने ये सब पिलग्रिम ऑफ होलीनेस के लिए तय कर दिया, और फ्री मेथोडिस्ट और आदि आदि के लिए पवित्रीकरण पर, तब पेंटिकॉस्टल का संदेश आगे बढ़ा। क्यों? ये मेथोडिस्टों के लिए विश्वास करना कठिन था। ओ हाँ, निश्चय ही ये था। देखिए, ये एक फिर भी एक दूसरे के लिए बोलता है। वचन आधारित होकर बोल रहा हूँ। हनोक ने आने वाले विनाश के लिए बताया, उसके उठा लिए जाने के द्वारा परमेश्वर उसे घर ले जा रहा था। वो एक गवाह था। अब्राहम ने उन्हें मूसा के विषय में बताया, और मूसा ने मसीह के लिए बताया। देखिए, वे निरंतर एक दूसरे को बता रहे थे। मसीहा ने इस समय के लिए बताया, बता रहा था ये क्या होगा। आप कहते हैं ओ भाई ब्रणम, ओ हाँ उसने किया, आइए जरा मैंने यहाँ बहुत सारे पवित्र लेख लिखे हुए हैं और मैं दो या तीन का उल्लेख करूंगा। आइए मत्ती 24 को लेते हैं, अब आइए मत्ती 24 अध्याय को लेते हैं और पढ़ते हैं वो वहाँ क्या बताता है कि क्या घटित होगा, कैसे राष्ट्र राष्ट्र के विरोध में उठेंगे। परंतु तब स्मरण रहे, तब वो नीचे आता है और कहता है जैसा ये नूह के दिनों में था और जैसा ये लूत के दिनों में था ऐसा ही ये मनुष्य के पुत्र के आने पर होगा। उसने ये पहले से बताया, उसने इन बातों की भविष्यवाणी की, ये बातें घटित होंगी। उसने कहा अब जब ये सारी बातें हो रही थी अभी समय नहीं था आदि आदि, परंतु कहा अंजीर के वृक्ष के दृष्टांत से सीखो, जब ये युवा है और अपनी डालियों को निकालता है और दूसरे वृक्षों से, तब तुम जानते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी प्रकार से जब तुम इन बातों को घटित होते हुए देखो जान लो कि समय निकट है, यहाँ तक कि द्वार पर है। अब जब आप क्या देखते हो, अंजीर की कोपले निकल रही हैं और दूसरे वृक्षों की कोपले आ रही हैं। ये एक चिन्ह था और इसराइल सदा से एक अंजीर का वृक्ष रहा है। योएल ने भी इसकी भविष्यवाणी की, जो कुछ गाजाम नाम टिड्डी से बचा उसे हासिल ने खा लिया और चीजों को नीचे ले गई। परंतु परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी, प्रभु ने कहा मैं लौटा दूंगा और वो इसे करेगा। परंतु इसके पहले वो इसे आत्मिक स्थिति में लौटाए, अन्य जाति की कलीसिया उठा ली गई। वो एक समय में दोनों को एक साथ नहीं लेगा। अब आप वचन को अपने में घुमा नहीं सकते इस प्रकार से, समझे। एक ही समय में उसके दो गवाह कभी नहीं हुए थे, मुख्य गवाह, और उसके पास कभी नहीं हुए, कभी नहीं हुए। उसके पास एक ही समय में दो कलीसियाएं कभी नहीं हुई। ध्यान दें, यदि अन्य जाति की कलीसिया को पहले उठाया जाना है यहूदियों के लिए, तब डेनियल के 70 सप्ताहों का अंत होगा। 3.5 वर्ष मसीह ने भविष्यवाणी की और फिर वो मार डाला गया, वो राजकुमार 70वें सप्ताह के मध्य में, और फिर वहाँ 3.5 वर्ष बच जाते हैं और हम प्रकाशित वाक्य के दो भविष्यद्वक्ताओं को पाते हैं। उसने फिर अपना लबादा कभी नहीं बदला, प्रकाशित वाक्य 11 का नीचे आया और यहूदियों के लिए भविष्यवाणी की। अब इस समय में कलीसिया उठा ली गई है और हम इसराइल को देखते हैं पहली बार सैकड़ों वर्ष के लिए, लगभग 2000 वर्ष से अधिक। अब एक राष्ट्र बन गया है, उसकी अपनी सेना, अपना पैसा। इसराइल अपने घर में है, अपने राष्ट्र में, अपना झंडा, संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा हुआ है। वो एक राष्ट्र है। क्यों? ये एक महानतम चिन्ह है जिसके लिए हम सोच सकते हैं। ठीक अब इसराइल अपनी धरती पर है और यीशु ने कहा ये पीढ़ी जो इसराइल को अपने राष्ट्र में वापस जाते देखती है वो जाती ना रहेगी जब तक कि सब पूरा ना हो जाए। देखिए, उसने इस दिन के लिए बोला है। मैं आपको दूसरा दूं, दूसरा तिमोथियस 3, वो अंत के समय की कलीसिया के लिए बोलता है। कहा वे ढीठ, घमंडी, परमेश्वर के प्रेम से अधिक सुख के चाहने वाले होंगे। सारे संसार में कलीसिया को ले, परमेश्वर के प्रेम से सुख के चाहने वाले। घर पर रुककर प्रार्थना सभा में जाने से पहले टेलीविजन के कार्यक्रम को बुधवार रात्रि में देखते हैं। आप कहते हैं वे बैप्टिस्ट हैं, ये पेंटिकॉस्टल, निश्चय ही। जी हाँ श्रीमान। ओ ढीठ, घमंडी, सुख के चाहने वाले, वचन को ठीक नाक के नीचे रखते हैं, वे इसे नहीं देखेंगे। ओ सुख के चाहने वाले बजाय परमेश्वर के प्रेम को। स्त्रियों को बताएं कि वे बाल ना काटें, जो भी है वैसे काटती हैं। ओ सुख के चाहने वाले बजाय परमेश्वर के प्रेम के, संधि तोड़ने वाले, झूठा दोष लगाने वाले, असंयमी, भले के बैरी, उनके पास है। आप कहते हैं ये परमेश्वर के ना मानने वाले हैं, नहीं, भक्ति का भेष भरते हैं परंतु उसकी सामर्थ को नकारते हैं। वो सामर्थ जो आपको इस प्रेस से छोड़ा सकती है, आधुनिक संसार की व्यवस्था, वहाँ एक सामर्थ, ऐसों से दूर रहो। चिंता नहीं करता बाकी लोग क्या कहते हैं, ये तो आप व्यक्तिगत परमेश्वर के सामने हैं, आपको उत्तर देना है। कोई मतलब नहीं ये स्त्री क्या करती है या वो स्त्री करती है या वो पुरुष करता है या वो पुरुष करता है या ये प्रचारक कहता है या वो प्रचारक कहता है, ये तो आप और परमेश्वर हैं, रूप रखते हैं रीति रिवाजों के पीछे, परंतु उसकी सामर्थ को नकारते हैं, ऐसों से दूर रहना। क्या हम उस दिन में जी रहे हैं? निश्चय ही हम लोग अंतिम कलीसिया युग में। फिर से देखिए, पवित्र आत्मा यीशु स्वयं में, मैं यीशु अपने दूत को इन बातों की गवाही के लिए भेजता हूँ। और प्रकाशित वाक्य का 3रा अध्याय इस कलीसिया युग के लिए बोल रहा है। यीशु गवाही दे रहा है कि अंत के दिनों में क्या घटित होगा। उसने कहा कलीसिया धनी हो जाएगी, लुदिकिया, गुनगुनी, बस इधर उधर आसपास कूद सकते हैं जब संगीत चिल्लाने के लिए बचता है। समझे, ये ठीक बात है, परंतु गवाही और जीवन के लिए ये साफ होगा, ये इससे बहुत दूर। मैं नहीं, मैं किसी बात के लिए आपको आघात नहीं पहुंचाऊंगा, परंतु अधिक समय नहीं हुआ मुझे दर्शन मिला कि परमेश्वर के स्वर्ग लोक में हूं। मैं नहीं सकता सिवाय कि मैं सच बताऊं। परमेश्वर हम सेवकों की सहायता करे कि इन बातों में ईमानदार रहें और सच बताएं। देखिए, ठंडा, बाइबल ने कहा वे इस प्रकार के होंगे, इसलिए वे वैसे ही होने जा रहे हैं। यदि ये लूथर के साथ सिद्धता से प्रभाव डाले, ये सिद्धता से प्रभाव डालता है फिलाडेल्फियाई युग में वेस्ली के साथ। इसे तो ये बोलना है और सिद्ध होना, इसने ये बोल दिया और ये बिल्कुल ठीक लुदिकिया में इसी प्रकार से होगा। धनी, किसी चीज की आवश्यकता नहीं। हम भवन बनाने में लाखों डॉलर डाल सकते हैं, हम उसमें हर चीज लगा सकते हैं कि प्रत्येक संसारिक मनोरंजन, हम प्रार्थना भवनों को शानदार बना सकते हैं, ये ठीक है, कुछ भी नहीं है जो बिल्कुल ठीक हो। परंतु मैं ये कहने का यत्न कर रहा हूँ, तब जब संदेश उन पर सफलता पाने लगता है, वे आपको नहीं चाहते, आप एक पागल, आप एक धर्मांध हैं, आपको तो 50 वर्ष पहले होना चाहिए था। समझे, ओ आप ये सोच सकते हैं मेरे पास इस तरह का पास्टर नहीं होगा। जो भी है, ये तुम्हारा पास्टर है। इजाबेल इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेगी कि एलिया उसका पास्टर है, परंतु निश्चय ही वो था, निश्चय ही वो था। वो एक आदर्श भेजा गया राष्ट्र के लिए, एक संदेशवाहक इसराइल का, और आज वो बहुमूल्य पवित्र आत्मा और परमेश्वर का वचन कलीसिया का संदेश वाहक है कि इन्हें सामर्थ्य दे और उन्हें वापस वचन पर लेकर आए। हम इसी पर बोलते हैं, परंतु आप देखिए कोई नहीं हिलता। ओ देखिए, हम उन बातों में घुल मिल गए हैं। मैंने किसी को ऐसी गवाही में कहते सुना, उसे ऊंचे पर उठाओ। आप कैसे उसे ऊंचे पर उठा रहे हैं? और ओ, कोई छोटा सा वाद ले, किसी ने कहा देखें और प्रार्थना करें। इसका अर्थ, जब आप प्रार्थना करें अपनी एक आंख खुली रखें, दूसरी वाली से देखें, देखें और प्रार्थना करें। क्या देखें का अर्थ, प्रभु के आगमन को देखें और प्रार्थना करें। देखिए, ये बस बातों को इधर उधर घुमाना है। इसलिए उसमें हम क्या करते हैं, हम अपनी एक रीति बना लेते हैं, और तब यदि भले ये परमेश्वर ने बनाया हो या ना, और हम बाहर जाते हैं। पहली बात, आप जानते हैं हमारे पास एक छोटा झुंड है जो हमारे पीछे है, और उन्हें कलीसिया की मुख्य देह अलग खींच रही है। ये ठीक बात है, बजाय कि अंदर आने और प्रार्थना करने और चीजों को सुलझाने और देह को आगे बढ़ने दें, हम उन बातों को करते हैं चाहे ये सकारात्मक हो या नहीं। यदि आपके पास सत्य है तो फिर सत्य के साथ बने रहें, ये बिल्कुल ठीक बात है, परंतु पहले ये बाइबल का सत्य हो। ध्यान दें, द्वारा ये लुदिकिया युग और भविष्यद्वक्ताओं या पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा बोल रहा है, जो कि मसीहा था, वो पौलुस नहीं, ये मसीह था। परमेश्वर ने भिन्न भिन्न समयों और भिन्न भिन्न विधियों से हमारे पूर्वजों से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बात की, इन अंत के दिनों में यीशु मसीह के द्वारा, इब्रानियों 1। ध्यान दें, पवित्र आत्मा, मसीह, मसीह सुसमाचार का केंद्र, मसीह वचन का केंद्र, और यदि मसीह केंद्रित और परमेश्वर इसे सत्य होने के लिए प्रमाणित करेगा। यही कारण है कि आप पेंतिकोस्त लोग विश्वास में पवित्र आत्मा पाते हैं, मेथोडिस्ट के पवित्रकरण के सामने, क्योंकि आप लोग ठीक वचन पर हो। यही कारण है कि आप मेथोडिस्टों के पास पवित्रीकरण है, जबकि लूथरन इसका विश्वास नहीं करते। आप लोग वचन पर थे, इसी प्रकार से आप लूथरन बचाए गए, न्यायोचित ठहरे, क्योंकि आपके संदेशवाहक ने न्यायोचित को प्रचारा और कैथोलिकों की कलीसिया का विरोध किया, जो कि सबसे अलग चिन्ह की थी। वे बस कलीसिया का विश्वास किया। आप बाइबल पर वापस आए और आपने बाइबल का वो सत्य लिया और उस पर टिके रहे, और तब साथ साथ वैसली दूसरे सत्य के साथ आता है और इसे पकड़े रहता है। फिर पेंतिकोस्तल दूसरे सत्य के साथ आगे बढ़ते हैं और इसे पकड़े रहते हैं। तब यदि आप इसे पकड़े रह सकते हैं और देखते हैं कि ये सही है, क्यों नहीं पूरे को लेते हो जो सही सिद्ध हुई, इस सब का विश्वास करो। अब जब हम इन संदेश वाहकों को देखते हैं, तब हम जानते हैं हम मसीह को देखते हैं, महान परमेश्वर भविष्यद्वक्ता पहले से उन घटित होने वाली चीजों को बता रहा है। ये क्या कर रहा है? फसल के समय को ला रहा है। ये उस समय को ला रहा है कि फसल काटे जाने वाली है। अंत के दिनों में क्या होगा, आप ये देखते हैं। अब ये बातें अंत के दिनों में होंगी। हम जानते हैं कि हम किस प्रकार की फसल की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम उस कलीसिया को ढूंढ रहे हैं जिसके पास एक समय उजियाला था, उससे अलग हो गए, संसार की चकाचौंध में चले गए, सब चमकाया हुआ। क्या ये ठीक है? अलग हो रहे हैं, किसी भी प्रकार के सदस्य को ले रहे हैं और कुछ भी, और इसे पेंतिकोस्तल कह रहे हैं, किसी को भी बपतिस्मा दे रहे हैं। जल मनुष्य को नहीं बचाता, ये यीशु मसीह के लहू को लेता है। जल में जीवन नहीं है, जीवन लहू कोशिका में आता है। पवित्रकरण को लेते हैं कि जीवन को शुद्ध करे, पाप की इच्छा को मार डाले, तब पवित्र आत्मा उस शुद्ध बर्तन में आता है और उसे सेवा के कार्य के लिए अलग करता है। वेदी बर्तन को पवित्र करती है, परंतु और उसमें भरा जाना जो उसे सेवा में रखता है, ये एक और सेवा के लिए रखा गया, अब इसे सेवा में लगाना है। और पवित्र आत्मा कलीसिया को सेवा में लगाता है। मैं ये छोटा गाना पसंद किया करता था, वे ऊपर के कमरे में जमा थे, सब उसके नाम में प्रार्थना कर रहे थे, उन्होंने पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाया और सेवा के लिए सामर्थ आई। जी हाँ, और बाकी ये कहते हैं, उसने उनसे उस दिन क्या किया, वो तुम्हारे लिए भी वैसा कर सकता है निश्चय ही। वो फसल, भविष्यद्वक्ताओं, हम वहाँ मसीह पर रुक गए, हम बस थोड़ा सा पीछे गए हैं। यशायाह भविष्यद्वक्ता, उसने कैसे गवाही दी, अंत के समय के लिए भविष्यवाणी की। उसने कहा, सारी देह सड़े घावों से भर जाएगी, हर मेज उल्टियों से भरी है। क्यों? पुरुष और स्त्रियां आज प्रभु भोज लेते हैं, दो या तीन पत्नियों के संग रहते हैं, या दो या तीन पतियों के संग, ठीक, सब प्रकार का धूम्रपान और सारी बातें कलीसिया में आ रहे हैं, प्रभु भोज ले रहे हैं। अब मैं इससे भी जरा नीचे जा सकता हूँ, परंतु मैं थोड़ी देर प्रतीक्षा करूंगा, हो सकता है तब ठीक ना हो। मुझे रुकावट का सा अनुभव हो रहा है जो मैं कहने जा रहा था, परंतु मैं आप पंक्तियों के बीच में पढ़ सकते हैं। आप जानते हैं कि बाइबल क्या कहती है, कौन सी बातें साधारण या असाधारण हैं। तब हम सारी चीजों को होते देखते हैं और राष्ट्र, विज्ञान कहता है ये 4 या 5 वर्षों पहले, ये अर्धरात्रि में 3 मिनट है। इसराइल अपनी जन्मभूमि पर है, कलीसिया लुदिकिया में है। ओ प्रभु, हम किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? मामला क्या है? हम लोग सांझ के उजियाले की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ओ, मुझे आश्चर्य है यह आएगा यदि हम उसे पहचान सकें, या ये हमारे सिरों के ऊपर से होकर निकल जाएगा जैसा ये दूसरे युगों में हुआ। वे ये कभी नहीं जान पाए जब तक कि ये बहुत दूर ना निकल गया। आपको स्मरण है, वे धर्मी लोग वे ही थे जिन्होंने भविष्यद्वक्ताओं को मार डाला जो उनके पास भेजे गए। यीशु ने ऐसा कहा, उसने कहा, तुम पाखंडियों, कहा, तुम भविष्यद्वक्ताओं की कब्रों को सजाते हो और तुम्हारे पूर्वजों ने उन्हें वहाँ गाड़ा और फिर उनकी कब्रें बनाई। रोमन कैथोलिक कलीसिया को देखें, संत पैट्रिक की कब्र को सजाया, जॉन ऑफ आर की कब्र को, उन्होंने उस स्त्री को मार डाला और एक जादूगरनी के समान जला दिया, क्योंकि वो आत्मिक थी, क्योंकि उसने दर्शन देखे, उन्होंने उसे एक जादूगरनी के समान जीवित जला दिया। 200 वर्षों पश्चात उन्होंने पादरियों के शवों को खोदा, उन्हें नदी में फेंक दिया और प्रायश्चित करने के लिए, ये जानते हुए कि वो मसीह की दासी थी। परंतु उस दिन वे नहीं जान पाए कि वो कौन थी, जबकि कलीसिया वहाँ से निकल रही थी और ये लोगों के सर पर से होकर के निकल गया, और वे इसे कभी नहीं पहचानेंगे। यीशु, उन्होंने नहीं जाना कि वो परमेश्वर का पुत्र था जब तक वो मारा गया और गाड़ा गया और फिर जी उठा। क्या पतरस ने उन पर पेंतिकोस्त के दिन उन पर दोष नहीं लगाया? तुमने दुष्ट हाथों से जीवन के राजकुमार को लेकर घात किया, उसे मार डाला। ओ, उसके आगमन की लाल बत्ती चमक रही है। आमीन, हम अंत पर हैं। आमीन, लाल बत्ती का चिन्ह चारों ओर है, हर कहीं इकोबाद लिखा हुआ है। समय समाप्त हो गया, समय नहीं रहा, विज्ञान अपने अंत पर आ गया। ये ठीक बात है, उन्होंने कुछ खोज लिया है, वे सारे संसार को उड़ा देंगे, हर कोई दूसरे से भयभीत है, वे अंत समय में हैं। सभ्यता ये ऐसे स्थान पर है कि लोग चोटी पीछे की ओर झूल रही है, लोग सभी लोगों जैसा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक व्यक्ति आधुनिक होना चाहता है और अपनी लटकती हुई दाढ़ी के साथ इस प्रकार से और उसके पांचों कमर से नीचे तक लटक रहे हैं, बाहर लटकती हुई कमीज के साथ विद्यालय के मैदान से इस प्रकार से निकले चला जा रहा है। इसके पश्चात संसार की बुद्धिमानी जो आने वाली है, यदि कोई और है तो 14 वर्ष की लड़कियों को बाहर लिए जा रहे हैं वहाँ बाहर सड़क पर। आज मेरे मोटल में वहाँ एक माँ कम कपड़े पहने छोटी बंदूक की गद्दी पर लेटी थी, उसका पति वहाँ उसी प्रकार से लेटा था और वो ठंडी हवा। वे सोचते हैं कि उनकी देह बहुत सुंदर है, उन्हें दिखाना चाहिए। क्या आप ये अनुभव नहीं करते कि ये शैतान है? ये ठीक बात है, अपने वस्त्र उतारे हुए। केवल पागल ही ऐसा करते हैं। सेना ने ये किया क्योंकि वो पागल था। ध्यान दें, और हमारे पास ये है, परंतु ये तरीका कहलाया, ये आधुनिक कहलाया। हम इसे शैतान कहते हैं। इसे सिद्ध करने के लिए मेरे पास बाइबल है कि ये शैतान है, ये शैतान की जकड़ है। प्रेत से ग्रस्त, उत्पीड़न नहीं, ग्रस्त, उसने आपको ले लिया। ये ठीक बात है, उन्हें इस विषय में बताएं, वे आग बबूला हो जाएंगे। वे इससे कुछ मतलब नहीं रखना चाहते। नहीं श्रीमान, उनके पास उनके अपने विचार हैं, क्योंकि अपने मुर्दा घर में जाते हैं। वे इसे कभी नहीं बुरा भला नहीं कहते। विद्यालयों में कामुकता प्रदर्शन का अभ्यास करते हैं और कलीसियाओं में, और पादरीगण फटकार लगाने से डरते हैं। कभी कोई बात, एक सेवक को उस दिन कहते सुना जब उन्होंने इस नीले रंग की जो आंखों पर लगाते हैं खोज की, और लाल होंठ, उन्होंने संसार को और सुंदर बना दिया। सुसमाचार का सेवक प्रचार मंच से यह टिप्पणी करता है इस प्रकार से, उसे आवश्यकता है कि वो कलवर की यात्रा करे। ये बिल्कुल ठीक बात है, जबकि बाइबल इसे दोषी ठहराती है। और एक पेंटिकॉस्टल झुंड ने एक बहन को बताया, एक जगह आकर रो रही थी क्योंकि उसके लंबे बाल उसकी पीठ पर पड़े हुए थे। कहा, आपका अतिरिक्त पहिया पंचर हो गया। कहा कि तुम्हें अपने बाल कटवा देने चाहिए, क्योंकि बाइबल ने कहा कि वो यशाया 5वां अध्याय, उनके पास गोल पहिया चांद के समान। अब बाइबल ये कैसे कह सकती है कि एक महिला असाधारण चीज करती है, वो इसके साथ रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। जब वो अपने बाल कटाती है, वो प्रमाणित करती है कि वो अपने सिर का अपमान करती है, और फिर लंबे बाल। आप बाइबल से इस प्रकार की बात कैसे कहलवा सकते हैं? अच्छा, हमारी पेंटिकॉस्टल महिलाओं के साथ क्या मामला है? आपने कुछ अधिक टेलीविजन देख लिया है, आपने संसार को अधिक देख लिया, और आप में परमेश्वर के वचन के लिए रुचि नहीं है। अब बाइबल ने ये कहा है कि यही जो बाइबल ने कहा, ये मैंने नहीं, अब ये बाइबल है। ओ कामुकता का आकर्षण। अधिक समय नहीं हुआ, एक महिला ने मुझसे कहा, मैं उनके पहनावे और छोटे छोटे कपड़ों के विषय पर चल रहा था। कहा, मैं स्लैक्स पहनती हूँ। मैंने कहा, ये और खराब है। अब बाइबल ने ऐसा कहा, वो नहीं बदल सकता। आप कहते हैं ये तो बैप्टिस्ट है, ये पेंटिकॉस्टल है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये ठीक बात है, ये सच है, परंतु बात क्या है, क्या मामला है? किसी ने कहीं छूट दी। मेरा एक बूढ़ा प्रचारक मित्र कहा करता था, हम रुकावटें हटाते हैं, हम पाप के साथ समझौता करते हैं, हम रुकावटें हटाते हैं, भेड़ें बाहर निकल जाती हैं, परंतु बकरियां अंदर कैसे आ गईं? क्या मामला है? जब आप रुकावटें हटा देते हैं, परमेश्वर के वचन की बाढ़। स्मरण रहे, ये परमेश्वर की योजना थी, अपनी कलीसिया को अपने वचन से सुरक्षित रखे आरंभ में। और जब हवा ने तर्क किया और कहा, ठीक है, अब क्या ये तर्क योग्य नहीं, मैं ऐसे ही भली प्रकार से जी सकती हूँ, उसने ये किया और इसने सदा ये किया। यही कारण है कि इसे प्रचार करने के लिए मना किया। देखिए, ये बस रुकावटों को हटाना है। यही जहाँ कलीसिया, इसकी जड़ फूट निकली पेंटिकॉस्टलों में, और यही जड़ें हैं। इसके लिए कोई पवित्र वचन नहीं है, समझे? अब आप क्या करते हैं, आप उन्हीं को एकत्र करते हैं जो आपको पहले अदन में मिला। ध्यान दें, अब तब जब हम वचन पर आते हैं, आप इस विषय में कहते हैं, इसके साथ कोई नहीं खड़ा हो सकता। ये कहने को मैं किसी को भी चुनौती देता हूँ। सर्प वंश पर प्रचार किया, इस विषय में बहुत से क्रोधित हो गए। मैंने कुछ लोगों से कहा, आकर इसका सामना करो, मैंने उन्हें नहीं पाया। अधिक समय नहीं हुआ, शिकागो में आपके पास टेप है, उन्होंने सोचा कि उन्होंने मुझे किसी बात में फंसा लिया है। उनके साथ सारा महान सेवकाई का संघ शिकागो का था, भाई क्या, और भाई टॉमी हिक्स और भाई कार्लसन वहाँ पर थे। दो रात्रि पहले प्रभु ने मुझे रात में जगाया, कहा जाकर खिड़की के पास खड़ा हो, और मैं गया और तूफान चल रहा था। उसने कहा अब उन्होंने तेरे लिए जाल बिछाया है। उसने कहा इस नाश्ते पर तू डरना नहीं, आगे बढ़, मैं तेरे साथ होऊंगा। अब ये प्रभु के नाम में है, आप उनसे पूछकर और मालूम कर लें। ये टेपों पर है, होने से पहले बता दिया। कहा अब जाने के लिए ना डर, परंतु जाकर खड़ा हो। कहा मैं तेरे साथ होऊंगा। और अगले दिन मैं भाई कार्लसन से मिला, सभा के अध्यक्ष वहाँ, और टॉमी हिक्स, और उसने मुझे बताया मैं उनसे मिलूंगा और हम एक स्थान पर जाएंगे जो टाउन और कंट्री कहलाता है, नाश्ते के लिए। मैं वहाँ ठीक वैसे ही बैठ गया। मैंने कहा भाई हिक्स, आप दिव्यता में डॉक्टर हैं और हम सेवकों के एक बड़े झुंड से मिलने जा रहे हैं, शिकागो का उनका संगठन, क्यों नहीं आप जाकर मेरे लिए बोले, मैंने आपके लिए बहुत कुछ किया है। मैं बस उसे परख रहा था। उसने कहा ओ भाई ब्रैनम, मैं ये नहीं कर सकूंगा। मैंने कहा भाई आप क्यों नहीं आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा आपके लिए कुछ भी करूंगा, अब आप मेरे लिए ये क्यों नहीं करते। उसने कहा ओ मैं ये नहीं कर पाऊंगा भाई ब्रैनम, वे इसके लिए शांत नहीं होंगे। भाई कार्लसन ने कहा नहीं वे नहीं होंगे। मैंने कहा आप जानते हैं क्यों। मैंने कहा मैं आपको कुछ बता दूं, क्योंकि आप दोनों जानते हैं कि उन्होंने मेरे लिए प्रश्नों का जाल बिछाया है। और मैंने कहा आपके पास ये है, अब ये टेप पर है, यदि आप टेप चाहते हैं हमारे पास हो सकता है, और आप इन सारे लोगों को जानते हैं। इसलिए मैंने कहा परसों बीती रात्रि मैंने एक दर्शन देखा कि हम यहाँ आज सुबह बैठेंगे और टॉमी इसका इनकार कर देगा। मैंने कहा अब ध्यान दें, आपने वो होटल का कमरा किराए पर लिया है। हाँ, किराए दे दिया गया है। हाँ भाई कार्लसन, परंतु आपको ये मिलने वाला नहीं है, ये यहोवा यूं कहता है। क्यों? आप लोग किसी और स्थान पर होने जा रहे हैं। वो हरा कमरा है, हम लोग भूरे कमरे में होने जा रहे हैं। मैं कोने में होऊंगा, डॉक्टर मीट मेरे दाहिने हाथ पर होंगे, और वो बूढ़ा अश्वेत सेवक और उसकी पत्नी यहाँ बाएं पर बैठेंगे। इसी प्रकार से ये ऐसे ही होने जा रहा है। और मैंने कहा आप ध्यान दें, बस चलते रहें। आपने परमेश्वर को चंगा करते हुए देखा है, एक बार उसे संघर्ष में देखिए। मैंने कहा वो महान शानदार है। मैंने कहा बस प्रश्नों पर ध्यान दें और देखिए ये कितना शांत हो गया। और उस प्रातः जब हम वहाँ पहुँचे, यदि आप टेप चाहते हैं, जिम ये आपके पास है, क्या आप यहाँ नहीं लाए? ठीक यहाँ, यदि आप चाहें तो टेप ले सकते हैं सभा में। मैंने कहा मेरे विरोध में आपके पास क्या है, आप लोगों के साथ क्या मामला है? भाई कार्लसन ने कहा भाई ब्रैनम ने मुझे ये दो दिन पहले बता दिया था कि ये होगा, और उन्हें वो भवन नहीं मिला, उन्होंने इसे निरस्त कर दिया। वो उन्हें वो नहीं दे पाए क्योंकि कुछ संगीतकारों ने इसे ले लिया था, और उन्हें मालूम नहीं था कि उन्होंने पेशगी दे दी थी, तब उन्हें वो निरस्त करना पड़ा उन व्यापारियों के लिए। संभवतः आपने ये संदेश सुना होगा, भाई विलियम्स यहाँ पर हैं और यहाँ भी। और उसने कहा भाई ब्रैनम ने मुझे बिल्कुल ठीक बताया कि कहाँ हर व्यक्ति बैठा हुआ होगा, और मुझे बिल्कुल ठीक बताया कि क्या घटित होगा। कहा एक बात, कहा मैं हमारा सारा झुंड भाई ब्रैनम के साथ असहमत हो सकता है उसके संदेश पर, परंतु कहा हमें एक बात स्वीकार करनी होगी, वो इसे बताने में भयभीत नहीं है, इसलिए तब कहा इसके साथ निर्भय है। कहा अब आप यहाँ पर हैं भाई ब्रैनम। मैंने कहा अब इसके पहले हम आरंभ करें, मैं चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति किसी भी चीज पर जो मैंने कही बाइबल ले और आकर मेरे बराबर में खड़ा हो। और वो सबसे शांत झुंड था जो आपने कभी सुना। मैंने कहा तब यदि आप इसका समर्थन नहीं कर सकते तो मेरे पीछे से हट जाएं। हाँ भाइयों, मैं आपके साथ कंधा मिलाने को तैयार हूँ, परंतु हमें बाइबल की सच्चाई पर वापस आना होगा। कहा आप उन स्त्रियों को क्यों नहीं छोड़ देते हो? ओ हाँ, आप एक लोग आपको परमेश्वर का नबी होने का विश्वास करते हैं। मैंने कहा मैंने ये कभी नहीं कहा। उसने कहा परंतु लोग ये विश्वास करते हैं। कहा क्यों नहीं आप उन स्त्रियों से अलग नहीं रहते? कहा और उन्हें ये बताना बंद करें कि वो कैसी वेशभूषा पहनती हैं और अपने बाल कटाती हैं और चीजें जिनका वो उपयोग करती हैं, आप उनसे अलग क्यों नहीं रहते? क्यों नहीं आप उन्हें सिखाते कि वरदानों को कैसे प्राप्त करें और परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ करें? मैंने कहा कैसे मैं उन्हें संसार में बीज गणित सिखाऊं जबकि उन्होंने अपना कैकेगे भी नहीं सीखा? ये ठीक बात है, आपको वापस आरंभ की नींव पर आना है। परमेश्वर हम पर अब अनुग्रह करे। जी हाँ श्रीमान, हम यहाँ अंत के समय पर हैं, लाल बत्ती चमक रही है, प्रभु का आगमन निकट है। जी हाँ श्रीमान, सुनिए, अंत समय का संदेश अंत समय की स्थितियों से मेल खा रहा है। जहाँ से वे हटे, संदेश को उन्हें वापस लाना है। अंत समय का संदेश सदा अंत समय की स्थितियों से मेल खाता है, सारे पवित्र वचन में से होते हुए। इससे इस बार ऐसा ही करना है, मूल वचन पर लौटने की पुकार। ओ प्रभु, दूसरे संदेश वाहकों के समान अपने दिन में किया, इस संदेश को भी वैसा ही होना है। हमसे प्रतिज्ञा की गई है, परमेश्वर ने अपने वचन में इसकी प्रतिज्ञा दी है। मलाकी 4 ने कहा ये होगा, और बालकों के विश्वास को वापस पूर्वजों पर लेकर आना, ये प्रतिज्ञा हुई है और हम उस दिन में रह रहे हैं। ओ, ये हर बार सदा से रहा है। अगुओं का झुंड जो लोगों को भ्रमित कर देते हैं, अधिकांश में ये लोग नहीं, ये अगुए जिन्होंने इन्हें गड़बड़ कर दिया। अब चलिए हम, आप कहते हैं ओ भाई ब्रणम, अच्छा अब जरा एक मिनट, अब हमें इसे वचनानुसार बनाना है, यदि ये वचन नहीं तो फिर ये अच्छा नहीं। उनके बुद्धिमानी वचनों के द्वारा, उनकी बिना प्रेरणा की अगुवाई, संसारिक बुद्धिमानी के वचन, वे क्यों वहाँ कुछ वे प्रतिभाशाली वहाँ साथ बैठे, परंतु आप सोचते हैं कि शैतान भी इस पर प्रतिभाशाली नहीं है? क्या वो नहीं था भाई यीशु मसीह के पास जाएं और उसे कारण बताएं और उसे वचन का उल्लेख भी दें? उसने ये किया, वो इस पर प्रतिभाशाली है, परंतु यीशु ने उसके साथ कभी तर्क नहीं किया। उसने कहा ये भी लिखा है, मुझसे दूर हो जा शैतान। जी हाँ, बिना प्रेरणा की अगुवाई। कोहरा को देखिए, उन दिनों में जब परमेश्वर ने मूसा को संदेश के साथ भेजा, और कोहरा और दातान ने सोचा, मूसा के पास आए और कहा अब जरा एक मिनट, तुम अपने पर बहुत कुछ लेते हो, तुम सोचते हो कि सागर किनारे तुम ही एक अंकड़ हो, बत्तख तालाब में केवल तू ही एक है। मैं तुम्हें बता दूं, और दूसरे लोग भी पवित्र हैं। मूसा ने ये नहीं कहा कि वे पवित्र नहीं थे, परंतु उसे एक प्राधिकार मिला था जो कि उसे करना था, और उन्होंने एक झुंड संगठित किया और मूसा के विरोध में आ रहे थे, और परमेश्वर ने उसे बताया जाकर सामने द्वार पर खड़ा हो। उन पुरुषों के हाथ में धूपदानी है, और आप जानते हैं कि उस धूपदानी ने क्या किया, परमेश्वर ने पृथ्वी को खोला और वो उन्हें निगल गई, और उनके पास वेदी की आग उसमें थी, धूपदानी की आग के साथ, जैसा मूल सिद्धांत ये था। वे संदेश को पहचानने में असफल रहे। परमेश्वर ने कहा मैं वहाँ मूसा को भेजता हूँ कि वहाँ ये करे, तू उनको यहाँ लेकर आ। देखिए, वे इसे पहचानने में असफल रहे। मूसा उनके साथ बहुत स्पष्ट था, जैसे एलिया था। भविष्यवक्ताओं के विद्यालय बिल्कुल स्पष्ट वचन के साथ टिका है। यही जो आप पेंतिकोस्त लोग हैं, अपने आप को बाकी संसार से अलग कर लिया, सीधे वचन के साथ। अब उन चीजों में ना खो जाना जिनसे आप निकल कर आए हैं, आप भटक गए। अपने लंगर को कलवरी से ना काटना, परमेश्वर के वचन को पकड़े रहना, क्योंकि इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, इसी के साथ बने रहो। अब दातान और उन्होंने सोचा कि वे थे, और दूसरा पुरुष हो सकता था। देखिए, ये मनुष्य बुद्धि अपने विचार परमेश्वर की योजना में मिलाने का यत्न, ये वाला अच्छा है। मनुष्य की बुद्धि अपने विचारों को परमेश्वर के वचन में डालने का यत्न कर रही है। ये काम नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा। इसने कभी काम नहीं किया, ये कभी भी काम नहीं करेगा। यीशु को देखें, जब वो वहाँ खड़ा हुआ, कहा तुम इससे कौन मुझे पाप के लिए दोषी ठहराता है? तुम इससे कौन ये दिखा सकता है कि मैंने ठीक वही नहीं किया जो वचन ने कहा मैं करूंगा? मैं मसीह होने का दावा करता हूँ, और यदि मैं अपने पिता के कामों को नहीं करता तो फिर मेरा विश्वास ना करो। परंतु यदि मैं कार्यों को करता हूँ और आप मेरा विश्वास नहीं कर सकते, मेरे कामों का विश्वास करो। वे मेरी गवाही देते हैं, बिल्कुल सही, और वे विश्वास नहीं कर सकते, वे अपने ही मार्ग चाहते हैं। उनका अर्थ गलत करने का नहीं, उनका अर्थ नहीं, मैं विश्वास नहीं करता कि मनुष्य का ये अर्थ है। मैंने वहाँ उन बड़े नामधारियों कलीसियाओं में अच्छे लोगों को पाता हूँ, मैं अच्छे मनुष्य पाता हूँ, परंतु जैसे ये वकील ने कहा रेडियो पर यहाँ आ रहे हैं, विचित्र बात की कैसे क्लर्जी मैन प्रचार मंच पर खड़ा हो सकता है। और देखिए, ये समय आते हैं, धार्मिक क्रोध उमड़ते हैं संसार के पापों का, और जब एक वकील को खड़ा होना पड़ता है और ये कहता है, और कैसे जनसाधारण का अपना पैसा सब प्रकार के चिड़िया घरों और पार्कों और चीजों पर उपयोग होता है, और मिशनरियों की योजना का खर्च नहीं उठाया जाता कि संसार को सुसमाचार पहुंचाए, जब भूखे मिशनरी उनके पैरों में जूतियां नहीं। हालेलुया। कोई नामधारी उनका पक्ष नहीं लेता, क्योंकि उनका पक्ष परमेश्वर के वचन के लिए, उनके पक्ष में कुछ नहीं। आप उनके लिए कुछ पाते हैं कि उनका पक्ष लें, तब उन्हें क्या मिला? धर्म सिद्धांतों का बड़ा झुंड। एक वास्तविक सच्चा मिशनरी चिन्ह हो रहे हैं उन कुछ घर में काम करने वाली स्त्रियों की बचत पर निर्भर करते हैं। ध्यान दें, ये वहाँ है। उनका ये करने का अर्थ नहीं भाई, परंतु उनके साथ क्या मामला है? वे अंधे हैं, यीशु ने ऐसा कहा। स्मरण रखें, यीशु ने कहा कि वही बात, और ये ऐसा प्रतीत होता है आज। अब सुनिए, मैं आशा करता हूँ मैं आलोचक नहीं। जब आप सत्य को बनाते हैं, मत महसूस करें मैं आलोचना कर रहा हूँ। मैं बस कोशिश कर रहा हूँ, मैं प्रेम करता हूँ। और यदि आप नहीं, मैं कलीसिया के लिए जोशीला हूँ। ये संभवतः असेंबली ऑफ गॉड कलीसिया है, या ये जो भी है, या मैं नहीं जानता ये क्या है, क्या मुझे इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। ये परमेश्वर की कलीसिया, यही जो ये है। मैं विश्वास करता हूँ ये चर्च ऑफ गॉड। अच्छा, हम सबको ये होना चाहिए, ना कि नामधारी परमेश्वर की कलीसिया, परंतु हमें हृदय से मसीह होना है। चर्च ऑफ गॉड दीवारों में रहता है, ना कि नाम आदि आदि। अब आज इस पर बहुत कुछ है कि सदस्यता ही सब कुछ है जो लोगों के लिए गिनी जाती है। अब बैप्टिस्ट को देखिए, बेदारी है। ओ, उनकी एक हुई थी, उनका 44 का एक नारा था, 44 में 10 लाख, और बिली ग्राम का संदेश जा रहा है। क्यों? निश्चय ही इसने बड़ी चीजें बनाई हैं, मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, ये एक महान चीज रही है। परंतु हमें क्या मिला? यीशु ने फरीसियों से कहा, तुम अंधों के अंधे अगुए, तुम एक मत परिवर्तन के लिए सागर को उलट पलट कर देते हो। वो नरक में जाने के लिए दुगना बुरा हो जाता है उससे जब उसने आरंभ किया। और आज हमारे पास यही है। बिली ग्राम, जब मैं उसके नाश्ते पर लुइविल केंटकी में था, वहाँ गया, ऐसा ही कठोर जैसा एक सुसमाचार प्रचारक था। उसने कहा, मैं जाता हूँ। पौलुस ने कहा, यहाँ एक उदाहरण है। कहा, पौलुस एक नगर में गया और एक का मत परिवर्तन किया। वो एक वर्ष बाद आया और 130 थे। कहा, मैं एक नगर में जाता हूँ और 30,000 का मत परिवर्तन करता हूँ, और एक वर्ष बाद आता हूँ और 30 भी नहीं पा सकता। उसने कहा, क्या बात है? और मैंने सुसमाचार प्रचारक के प्रस्ताव को सराहा। उसने अपनी उंगली का इशारा उधर जो 300 लोग बैठे थे किया। उसने कहा, ये तुम सुस्त प्रचारकों का झुंड। उसने कहा, तुम अपने दफ्तरों में मेज पर पैर रखकर बैठते हो और व्यक्ति को टेलीफोन करते हो और उसे आने को कहते हो और तुम्हारी कलीसिया का सदस्य बन जाए। तुम्हें जाकर उससे मिलना चाहिए। मैं वहाँ बैठा हुआ, मैंने सोचा, ओ परमेश्वर, आप जानते हैं सुसमाचार प्रचारक बिली, तू एक महान व्यक्ति है। मैं एक मौन, परंतु मैं आपसे कुछ पूछूं। मेरी इच्छा हुई मैं घूम सकता था और ये कहा, परंतु मैं भाई की सराहना करता हूँ। सोचिए, वो परमेश्वर का दास, परंतु मैं ये कहना चाहूँगा, तो फिर बिली, तो वे किस प्रकार के प्रचारक पौलुस उस एक के पीछे चलने वाले थे? क्या हुआ? पौलुस केवल अपने हाथ को उठाकर निर्णय नहीं लेता, वो उसे पवित्र आत्मा के बपतिस्मे पर लेकर गया, उसके प्राणों को आग से भर दिया और वो शांत न रह सका। आज यही मामला है, ये सदस्यता है। जी हाँ, सदस्य, बड़ी सदस्यता, बड़ी संडे स्कूल की कक्षाएं, किसी के लिए इनाम से भुगतान करते हैं जो मत परिवर्तन कर सकता है और किसी को ला सकता है किसी और कलीसिया से। देखिए, जिसके पास अधिकांश थे, आप जानते हैं ये फरीसीवाद है, और तब उस विषय पर शेखी मारते हैं। पिछले रविवार हमने उन्हें पछाड़ दिया। यदि आपको एक स्थान पर जाना है जहां आपको चर्च ऑफ गॉड बनाना है, एक चूहा दौड़, तो फिर ये समय है कि दरवाजे बंद करें और घर को चले जाएं। चर्च ऑफ गॉड पृथ्वी पर परमेश्वर का जीवित लेख है, यीशु मसीह को प्रकट करता है। मैं जानता हूँ ये लोकप्रिय नहीं है, आप इसकी आशा नहीं कर सकते। हम सही होने की आशा करते हैं, इस विषय में बड़ी शान मारते हैं, परंतु क्या आप जानते हैं कि बड़े शोर शराबे ने भविष्यद्वक्ता एलिया को प्रभावित नहीं किया? उसने आग और धुएं को जाते सुना और गर्जन और बिजलियां और लहू और तेल और सब कुछ, बड़ी बात जिसमें बहुत शोर हो, इससे वो परेशान नहीं हुआ। आप जानते हैं कि अमरीका सदा किसी बड़ी चीज को देखता है, बहुत सारे शोर उसमें, परंतु परमेश्वर एक धीमी छोटी आवाज है जिसने भविष्यद्वक्ता को आकर्षित किया। आप जानते हैं, एक गाड़ी खेत में गई और ये उछल रही थी और बहुत शोर मचा रही थी, और जब ये खेत से बाहर निकल गई और जब ये वापस आई, ये उन्हीं उबड़ खाबड़ रास्तों पर आई और जरा सा भी शोर नहीं किया। ये अच्छी चीजों से लदी हुई थी, समझे? जी हाँ, परंतु हमारा अनुभव शोर करने वाले झुंड पर टिका हुआ है। हम ये कैसे कर सकते हैं? हम इस प्रकार की चीजें कैसे कर सकते हैं? ओ प्रभु, और फिर हॉलीवुड के मुंह से जुड़ रहे हैं, और स्त्रियां प्रचार मंच पर अपने कसे हुए कपड़ों के साथ और कामुक दिखने वाली आत्मा में नाचने वाली, मैं नहीं जानता ये किस प्रकार की आत्मा है। मेरा अर्थ आलोचक होने से नहीं, अब मैं आपसे प्रेम करता हूँ। यदि मैं नहीं करता तो फिर परमेश्वर मेरा न्याय करेगा, यदि इसे छोड़ मेरा कोई और उद्देश्य है, समझे? परंतु आप ये समझ गए, देखिए, यहीं जहां पेंतिकोस्तल राह से भटक गए, कोने में हमारे पास भाई से अधिक था, ओ, हमारे पास असेंबली से कुछ अधिक था, क्योंकि हम वननेस या ट्रिनिटेरियन हैं, और हम ओ ये वो था या कुछ और, सब भिन्न प्रकार के मार्के उनके पास हैं। आप देखिए, ओ भाई, परमेश्वर को इससे कुछ लेना देना नहीं, वो तो व्यक्तिगत से व्यवहार करता है। ठीक है, ध्यान दे, अधिक शोर, परंतु इस बात से भविष्यद्वक्ता आकर्षित नहीं हुआ। भविष्यद्वक्ता अधिक शोर की चिंता नहीं करता, परंतु जब उसने शांत सी आवाज सुनी, वो जान गया कि ये वचन था। उसने अपना मुंह ढांप लिया और बाहर निकल कर आया। आप जानते हैं, सूर्य 15 मिनट में बहुत पानी खींच सकता है बिना किसी शोर के, और सबसे अधिक, और हम बहुत शोर करते हैं, कुछ गैलन पानी खींचते हैं उससे, जो सूरज जो लाखों बैरल करता है। ये ठीक बात है, हम सदा किसी चीज के लिए देखते हैं जो बड़ी हो और बहुत सारा विजय कोलाहल और इसमें शोर हो, और जब ये सच्चाई पर आता है कि वचन को ले, तब यहाँ पर चीजें आती हैं, समझे। आइए, वे कहते हैं, भाई परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैं आपको बताता हूँ, अधिक समय नहीं हुआ, मैं यहाँ एक व्यक्ति से मिला, मैं ये धर्म विरोधी होने के लिए नहीं करता, कृपया मुझे क्षमा करें यदि मैं सोच रहा हूँ कि धर्म विरोधी होता हूँ। मैं एक तंबू की सभा में था और सेवक, एक पेंटिकोस्टल सेवक अपनी पत्नी को पियानो बजाने के लिए लाया, और जब उसने अपनी पत्नी से मेरा परिचय कराया, ईमानदारी से मैं लगभग बेहोश हो गया। वास्तव में उसके छोटे छोटे बाल थे, घुंघराले, और उसने एक बड़ी सी बाली पहनी हुई थी, और उसके होंठ पर भी पर्याप्त सिंगार था, जो भी ये चीज हो, नाखून रंगे हुए, ऐसी लग रही थी जैसे कि वो एक थी, ये भयानक दिख पड़ रही थी, बड़े लंबे नाखून और इस प्रकार से कामुक सी दिखने वाली छोटी छोटी वेशभूषा पहने हुए। वो इससे अपने घुटने भी नहीं ढांक पा रही थी जब वो बैठी। भाई, मैं थोड़ी देर वहाँ खड़ा हुआ और मैंने कहा, भाई क्या मैं आपकी भावनाओं को ठेस पहुँचाऊंगा यदि मैं कुछ कहता हूँ? उसने कहा, क्यों, निश्चय ही नहीं, भला व्यक्ति, और वो भी भली महिला प्रतीत होती थी। मैंने कहा, क्या आप कहते हैं कि आपकी पत्नी संत है? बोला, जी हाँ। मैंने कहा, इस भाव को क्षमा करना, परंतु मुझे ये नहीं लगती। मैंने कहा, जानते हैं, या कुछ इस प्रकार से। मैंने कहा, उसने कहा, भाई बहनम, आपका क्या अर्थ है? ओ, उसने कहा, आप पुराने विद्यालय के हैं। मैंने कहा, मैं वचन के विद्यालय का हूँ। ये ठीक बात है, वचन का विद्यालय। मैं विश्वास नहीं करता कि संत ऐसा व्यवहार करते हैं, बस मैं ये नहीं कर सकता जब बाइबल इसे दोषी ठहराती है, समझे। ठीक है, हर बार प्रतीत होता है, हर बात जो इसके लिए सुनते हैं, उनके 40 निर्णय हैं, 44 निर्णय, हमारे पास 300 निर्णय थे। भाई, ये स्वीकार करना, स्वीकारना पत्थर है, ये ठीक बात है, क्योंकि पतरस उसके स्वीकारने पर पत्थर कहलाया था, छोटा पत्थर, पतरस उसका स्वीकारना। अब पत्थर ठीक है, परंतु क्या लाभ, यह पत्थर का क्या मूल्य है इमारत के लिए, यदि वहाँ वास्तविक पत्थर का कारीगर अपने तेज हथियार के साथ ना हो, परमेश्वर का वचन कि उन्हें काट कर परमेश्वर का पुत्र बना दे, समझे। स्वीकार करने का क्या लाभ, यही कारण है आप वापस आते हैं और 3000 में से आप 30 भी नहीं पाते। आप मिट्टी में से पत्थरों को बाहर लुढ़काते हैं और उन्हें बाहर लुढ़का लाते हैं, और अभी वे परमेश्वर के मंदिर के लिए उपयुक्त नहीं है, उन्हें छांटना होगा, परमेश्वर के वचन के साथ नापना होगा, वहाँ रखना होगा, आपस में मिलाना, प्रेरितों की शिक्षा पर निर्माण। यीशु मसीह कोने का पत्थर, और उसने कहा, वो जो मुझ पर विश्वास करता है तो जो काम मैं करता हूँ वो भी करेगा। ये ठीक बात है, हम कैसे कलीसिया हो सकते हैं जब हम एक दूसरे का तिरस्कार करते हैं। उसने कहा, इससे सब मनुष्य जान जाएंगे कि तुम मेरे चेले हो जब तुम एक दूसरे से प्रेम रखोगे। जब हम मत परिवर्तन और तोड़ते हैं उस नामधारी की भिन्नता के लिए, मैं इसे लोगों में नहीं रखता, मैं इसे नामधारी में रखता हूँ। ये ठीक बात है, लोग बिल्कुल नहीं समझे। ओ, ये बहुत बुरा है, फिर भी मैं, आपके पास वो तेज औजार होना चाहिए, परमेश्वर का वचन, कि इन्हें भवन के पुत्रों के आकार में ले आए। ओ प्रभु, मेरी प्रार्थना है परमेश्वर, जल्दी जल्दी मलाकी 4 के साथ, अंत के दिनों में हमें संदेश दिया, हमें किसी को दिया, किसी चीज को भेजा कि पेंटिकोस्टल कलीसिया को बचा ले। इस अंत के दिनों के लिए परमेश्वर किस प्रकार का संदेश भेजेगा, मैं आपको ये बताता हूँ। मेरे भाई बहनों, आपके भाई के समान संगी दास उस समय के आने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। वो उसी प्रकार का एक संदेश वाहक होगा जो दूसरी बार आएगा, उसी प्रकार का। वो कलीसिया को वापस वचन पर लाएगा, परमेश्वर हम इसके लिए नेव रखें, इसके पहले कि वो यहाँ आए, इसके पहले कि वो आए, आइए हम उसके लिए नेव रखें और चट्टान हो जाए, कट छट कर तैयार, कंधे से कंधा मिलाए उसके साथ, जब परमेश्वर ने उसे भेजता है, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा दी है कि वो ये करेगा। अब मैं जानता हूँ कि मैं अनुभव करता हूँ कि ये वापस आ रहा है, और स्मरण रखें, उस छोटे से वरदान के साथ मैं आत्मा को परख सकता हूँ। देखिए, अब आप इससे बुरा मान रहे हैं, अब मैंने मलाकी 4 कहा, परंतु मैं आपको कुछ बताऊं। आपने कहा, यीशु ने कहा, यदि तुम इसे ग्रहण कर सकते हो, यही एलिया है, वो बोला जा चुका है। परंतु यदि आप देखते हैं कि उसने क्या कहा, संत मत्ती 11वें अध्याय में और 6वां पद, यदि तुम इसे ग्रहण कर सकते हो, यही है जिसके लिए कहा गया और कहा, मैं अपने संदेश वाहक को अपने आगे आगे भेजता हूँ। ये मलाकी 3 था, न कि मलाकी 4, क्योंकि मलाकी 4 में उसने कहा, इसके पहले कि वो दिन आए पृथ्वी जल जाएगी और लोग उस पर चलेंगे, खूंटी के समान जल जाएगी। ये ठीक बात है, वो अपने आगे आगे संदेश वाहक भेजने की बात कर रहा है जो कि एलिशा था। मैं इन सारी बातों में विश्वास नहीं करता जो यहाँ आसपास चल रही हैं। आज एलिया का वस्त्र और सारी चीजें, मैं ये सारी झूठी बातें आनी ही है, निसंदेह कि वास्तविक चीज में गड़बड़ी करे जब वो आती है। परंतु मैं आपको बता दूं कि पेंतिकोस्तल युग के अंत में एक संदेश वाहक उठ खड़ा होगा और चीजों को पूरा करेगा। ये एक मनुष्य होगा, न कि एक झुंड, न ही नामधारी, परंतु एक मनुष्य। ये सदा से रहा है और परमेश्वर अपनी योजना नहीं बदल सकता, वो एक अनंत परमेश्वर है। स्मरण रहे, यदि वो संदेशवाहक यूहन्ना मलाकी 4 का संदेशवाहक था तो वचन असफल हो गया, क्योंकि इसने कहा ये होगा, पृथ्वी खूंटी के समान जल जाएगी और धर्मी लोग दुष्टों की राख पर चलेंगे। इसलिए इसे पढ़ें और देखें यदि ये सही है या नहीं, समझे। परंतु यीशु ने ये कभी नहीं कहा, उसने मलाकी 3 का उल्लेख किया, मैं अपने आगे आगे अपने संदेशवाहक को भेजूंगा कि मार को मेरे लिए तैयार करे। ये बिल्कुल ठीक बात है। अब स्मरण रखें, ये दूसरा वाला इसे बालकों के विषय को पूर्वजों की ओर फेरना था, बालकों के विश्वास को वापस पूर्वजों के विश्वास पर लेकर आना, मूल बाइबल पर। ठीक यही मूसा ने किया था, ठीक यही यीशु ने किया था, ठीक यही हर संदेश वाहक ने बाइबल में से होते हुए किया है। विधान के अंत समय में उन्होंने संदेश को वापस किया। लोगों ने संगठनों में होते हुए चीजें और सारे संकोच मिले और सारी बातें उन दिनों में, उन्होंने आज भी वही किया। इसलिए हम एक संदेश वाहक की प्रतीक्षा कर रहे हैं, परमेश्वर उसे भेजे। क्या आप सोचते हैं कि हम उसे ग्रहण करेंगे? नहीं श्रीमान, वो एक सनकी और एक अति उत्साही होगा, बहुत ही निश्चित। परंतु परमेश्वर उसे प्रमाणित करेगा। वास्तविक विश्वासी, वे जो अनंत जीवन के लिए पहले से ठहराए गए हैं, यीशु ने कहा, वो सब जो पिता ने मुझे दिया है आएगा, और कोई मनुष्य नहीं आ सकता जब तक पिता उसे ना खींच ले, और सब जो पिता का है, पिता समय मुझे दिया है, वे आएंगे। ये ठीक बात है, वे थे। मैं इस सबसे जो यहाँ बैप्टिस्ट शिक्षा है उसमें विश्वास नहीं करता, अनंत सुरक्षा की। मैं इसका इसमें विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ आप तब तक सुरक्षित हैं जब तक आप कलीसिया में हैं। परंतु आप बाहर जाते हैं, बाहर लहू के नीचे से बाहर, यीशु मसीह के, आप सुरक्षित नहीं है। मैं वर्षा से तब तक सुरक्षित हूँ जब तक मैं यहाँ पर हूँ। और जब आपका पवित्र आत्मा में बपतिस्मा हो गया और कहते हैं कि आपके पास पवित्र आत्मा है, और वे परमेश्वर के वचन का इनकार करते हैं, कहते हैं आपने विश्वास किया और पवित्र आत्मा पा लिया, और इनकार करते हैं कि वचन सच्चा है, तब वो फिर पवित्र आत्मा कैसे हो सकता है, जबकि वो है जिसने बाइबल को लिखा। पवित्र आत्मा अपने ही वचन का इनकार करता है, कहते हैं मैं गलत था, आप सही हैं, नहीं, ये परमेश्वर नहीं है। नहीं श्रीमान, तेज तलवार, प्रभु ने हमें एक महान संदेश भेजा है, यही जिसकी हम राह देख रहे हैं। तब निसंदेह जब वो उन पत्थरों को सही बैठाने को आता है और उन्हें भवन के लिए काटता है, क्या घटित होगा? उनमें से बहुत सारे वचन की परीक्षा में स्थिर नहीं रह पाएंगे, वे अपने संगठन से ही प्रेम करेंगे, इससे अच्छा कि वे परमेश्वर के वचन से प्रेम करते। यद्यपि वो वचन उस मनुष्य के द्वारा प्रमाणित हुआ, वो एक भविष्यद्वक्ता होगा जो प्रभु के नाम से आएगा, और वो वही होगा जो इस पृथ्वी पर आएगा, मैं इसका विश्वास करता हूँ। और हर कोई कहता है ये एक लोगों का झुंड होगा, मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे बाइबल में दिखाए कि ये लोगों का झुंड होगा। परमेश्वर अपना ही वचन तोड़ देगा, वो ये नहीं कर सकता। नहीं श्रीमान, उसने इसकी प्रतिज्ञा दी है, ये एक पुरुष होगा और वहाँ उसके साथ और होंगे, निसंदेह हजारों विश्वासियों की सारी कलीसिया उसके साथ होगी हर कहीं, जैसा ये नूह के दिनों में था कि वहाँ बहुत सारे नहीं बचेंगे, क्योंकि यीशु ने कहा जैसा ये नूह के दिनों में हुआ था। क्या आप ये जानते हैं? जैसा ये लूत के दिनों में हुआ था, इन्हें गिन लें, ऐसा ही होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा वचन नहीं टलेगा। देखिए मेरा क्या अर्थ है, ओ भाई अच्छा हो कि हम सूची ले लें, ये वास्तव में हमारे सोचने से पहले हो जाए। हो सकता है हम किसी दिन जाग जाएं और देखें कि हम किसी चीज में चूक गए। होशियार रहें, ध्यान दें, प्रार्थना ढूंढें, खोजें, ये आपके ऊपर से ना निकल जाए। और स्मरण रहे, जब परमेश्वर का वचन प्रचारा गया, परमेश्वर उस वचन को करने के लिए बाध्य है और इसे प्रमाणित करेगा। जानते हैं वहाँ उसने क्या कहा, लूत के दिनों में क्या घटित हुआ? उसने कहा जैसा ये लूत के दिनों में हुआ था, आग के जरा गिरने से पहले वहाँ क्या घटित हुआ था। अब फिर क्या होगा, आग के गिरने से पहले कलीसिया किस प्रकार का संदेश पाएगी? अब की सादोम नहीं, चुनी हुई कलीसिया, बस उस तीन को बनाए रहें, वहाँ सदोमी, वहाँ लूत और उसका झुंड, औपचारिक कलीसिया, वहाँ अब्राहम था, वो चुना हुआ, उन सब तीनों को संदेश मिला। जी हाँ, विभिन्न संदेश वाहकों के द्वारा। ध्यान दें, किस प्रकार की चुनी हुई कलीसिया में गए। उसने अब्राहम के साथ क्या किया? यीशु ने कहा, ऐसा ही मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में होगा। अब हम इसका इनकार नहीं कर सकते, यीशु ने ठीक यही कहा है, इसलिए निसंदेह ये इसी प्रकार से होगा। अब बहुत से जब यीशु आया और परीक्षा लाया और कहा, वचनों में ढूंढो, क्योंकि उनमें तुम सोचते हो कि तुम्हें अनंत जीवन मिलता है और वे वो हैं जो मेरी गवाही देते हैं, क्या वे परीक्षा में खरे उतर सके? नहीं। और कोई भी चट्टानों के उस स्वीकरण को जानता है, वो वचन परीक्षण पर स्थिर नहीं रह सकता, ढेर में फेंक दिया गया, ये तो जल फूट पड़ा, ये परीक्षण पर स्थिर नहीं रहेगा, ओ मनुष्य, तो फिर कबाड़े के ढेर में भेज दिया गया। परमेश्वर सदा गुण को गिनता है बजाय गिनती के। मैं बंद कर रहा हूँ, मुझे खेद है कि सारे समय आप लोगों को रोके रहा, मेरे करने का ये लक्ष्य नहीं था, बस जरा एक या दो क्षण, ये अंतिम टिप्पणी, फिर मैं चला जाऊंगा, बस एक मिनट। मैं आशा करता हूँ कि मैंने 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 जो कुछ कहा कि आपकी सहायता हो। देखिए, आप अध्ययन करें, समझे, परमेश्वर सदा गुण को गिनता है न कि सदस्य, और आज हम इसका उल्टा करते हैं, हम सदस्य और अच्छे कपड़े, अच्छी प्रार्थनाएं गिनते हैं बजाय गुण के। ओ हाँ, एलियाजर परिश्रम किया जब तक गुणों को ना पा लिया, ये ठीक बात है, वो किसे लेगा? और उसने परमेश्वर पर भरोसा किया, गुण किसके लिए? गुण इसहाक के लिए, दुल्हन जो कि कलीसिया का प्रतिरूप है। आप ये जानते हैं, ये अब्राहम का शारीरिक वंश था, ये अब्राहम का राजकीय वंश है। भाई एलियाजर, यदि संदेशवाहक दुल्हन खोज रहा है और गुण पाने की कोशिश में है, यदि वो एक मनुष्य आया, अंत समय का संदेशवाहक दुल्हन खोजने के यत्न में है मसीह के लिए, वो नामधारी की सदस्यता को नहीं ढूंढेगा, वो उस चरित्र को देखता है जो इच्छा रखता हो। ध्यान दें, पहले अच्छा चरित्र तब उसे इसहाक से मिलने के लिए तैयार करता है। जब उसने एक गुण को पा लिया, तब उसे शांत रहने दिया काफी समय तक कि उसका संदेश सुने, इसहाक का। अंत के दिनों का संदेश वाक यही है, सांझ के उजियाले का, कि पहले उस कलीसिया को ढूंढे जहां वे संदेश का विश्वास करेंगे। इसे ढूंढे, क्या आप पढ़ सकते हैं कि मैं किस विषय में बात कर रहा हूँ? ढूंढो कि वो कलीसिया कहाँ है, वो आपको भीतर भी आने देगी, वे आपके मुंह पर द्वार बंद नहीं करेंगे। तब जब आप वहाँ ये करते हैं, तब आपने ये चरित्र पाया। अब यदि वो पर्याप्त समय तक शांत रहती है कि उसे बताए कि उस दुल्हन को कैसी वेशभूषा पहननी है, उसे कपड़े पहनने हैं, शांत रहती है यदि वो ले सके। उस छोटी रिबका को देखें, हर वचन को सुन रही है, उसका छोटा हृदय धड़क रहा है, वो उसे बता रहा था, अब तू परिश्रम कर चुकी, मैं कहाँ जाऊंगा? जब तक मैं चरित्र को नहीं पालूंगा, तब जब मैंने चरित्र को पाया, तब उसे बहुत समय तक शांत रहने दिया कि उससे मिलने के लिए तैयार हो जाए। ओ क्या ही प्रभाव डालने वाली बात है, इच्छा थी कि इस घड़ी में थोड़ा और समय होता, उसे तैयार करें, उसका संदेश सुनने के लिए शांत खड़ी रही। एलियाजर अपने विषय में नहीं बता रहा था, परंतु वो उसके लिए बोल रहा था जिसके पास से वो भेजा गया था, और उसके पास वरदान थे कि सिद्ध करे कि वो कहाँ से भेजा गया। आमीन। वो इन चीजों को उसे पहना देना चाहता था। आप जानते हैं उसने उसे कैसे तय किया, यदि मैं उसे उसका मुंह धोने दूं। आप जानते हैं मैं इस पर मुझे रुकावट का अनुभव हो रहा है, इसलिए अच्छा है कि मैं शांत रहूं। जो भी है, मैंने बहुत कुछ कह दिया। आप जानते हैं कि मैं किस विषय में बात कर रहा हूं। ठीक है, सुनिए, बस शांत रहिए।
The end time messenger, his job will be to get
ध्यान दें, अंत समय का संदेश वाहक, उसका कार्य संतों को तैयार करना, दुल्हन दूल्हे के लिए तैयार है, ये उसका संदेश होगा। अब आप कह सीखना चाहते हैं ताकि आप बाद में बीजगणित का अध्ययन कर सकें, कब ये दूसरी मोहर जो पीछे है खुली, ये केवल उन्हीं पर प्रकट हुई ये ठीक बात है। पहले कहे गए सीखें, कहे गए क्या है, सदा यीशु पर विश्वास करो, ना कि अपना मत सार मसीह, समझे, जो वो कहता है उसका विश्वास करो, ना कि कौन क्या कहता है। यदि ये विरोध में है, यदि मनुष्य आपको बताता है यह आपके लिए सही है, यदि स्त्रियां अपने बाल कटवाएं, आप जानते हैं वो झूठ बोल रहा है, बाइबल कहती है ये गलत है। यदि वो ये कहता है आप डीकन हो सकते हैं और फिर भी चार या पांच स्त्रियां रख सकते हैं, वो झूठ बोल रहा है, ये वचन के विरोध में है, समझे। और दूसरी बातें जो हम बोलते हैं इसे वचन कहते हैं, और देखें यदि ये वचन सही है। कलीसिया को वापस वचन पर लाओ, ये मलाकी चार का संदेश वाहक क्या करता है, मूल विश्वास को वापस लाता है, विश्वास का पुनरुत्थान कि उन्होंने यीशु को मरुओं में से जी उठने के बाद देखा है, उसे अपने बीच में कार्य करते हुए देखा है। वे थोड़ा बोलने वाले पुरुष थे, वे गए और वचन को प्रचार किया और उन्होंने लंबा प्रचार किया। एक बार पौलुस ने पूरी रात प्रचार किया, समझे, एक व्यक्ति भवन पर से गिर पड़ा और अपने आप को मार लिया, उसने अपनी देह को उस पर डाल दिया, फिर से उसे वापस जीवन में ले आया, देखिए, समझे, प्रचार करता रहा। अब ध्यान दें, वे भिन्न पुरुष थे, जो PHLL QUST और इसके आगे आप जो भी आज कहना चाहते हैं, क्या संदेशवाहक को अलग करो, बल्कि संदेशवाहक के द्वारा विश्वासी को अविश्वासियों से। कुछ लोग इस पंक्ति में आ जाते हैं और कुछ नहीं आएंगे, कुछ लूथरन, कुछ कैथोलिक लूथरन से मिल गए, कुछ नहीं, कुछ लूथरन मेथोडिस्ट के साथ मिल गए, कुछ नहीं मिले, कुछ पेंटिकॉस्टल से मिल गए, कुछ नहीं मिलेंगे, कुछ सांझ के उजियाले के साथ, कुछ नहीं मिलेंगे। आप कैसे ये जानेंगे ये सांझ का उजियाला है या नहीं, इसे वचन से परखें, एक वचन से नहीं, सारे वचन को एकत्र करो, देखिए कि ये सही है या नहीं। ओ, इसमें क्या है, तब यदि ये संदेश परमेश्वर का समर्थन प्राप्त करता है, जो उसने कहा वही करता है कि वो करेगा, और ये वचन से मेल खाता है, तब वचन दूसरे समयों के समान प्रमाणित होता है, और जो दूसरे भविष्यद्वक्ताई ने किया। ध्यान दें, जब संदेश लोगों के द्वारा अस्वीकार किया गया और लगे कि संदेशवाहक पूरी रीति से पराजित हो गया, उसे दूसरा द्वार नहीं मिल सकता, उसे स्थान नहीं मिल सकता जैसे हमारा प्रभु था। स्मरण रखें, जब वो था, ओ, जब वो बीमारों को चंगा कर रहा था, वो युवा भविष्यद्वक्ता, ओ प्रभु, वो एक महान व्यक्ति है, हेलो रब्बी, आप कैसे हैं, परंतु एक दिन वो बैठा और उन्हें सत्य बताने लगा, उसे कलीसिया का समर्थन मिला, हजारों लोग उसके पीछे चल पड़े, उसके आसपास 70 सेवक थे, 12 को छोड़, परंतु एक दिन जब उसने रोटी को बदला, यानी रोटियों को बहुतायत में बदला, ये प्रमाणित करने के लिए कि वो परमेश्वर था, क्योंकि केवल परमेश्वर ही आकाश से रोटी बरसा सकता है, जी हाँ, समझे, उसने रोटियों को बढ़ा दिया और तुरंत उसके बाद वो पानी पर चला, एक आश्चर्यकर्म किया और उन चीजों को किया जो उसने की थी, ये सिद्ध करने के लिए कि वो था, और तब उसने किया, वो बैठ गया और उन्हें कठोरता के साथ लोगों को बताने लगा, लोग वापस चले गए, और 70 ने कहा, ओह, इसे कौन सुन सकता है, ये तो कठिन बात है, जो हमने वास्तव में कुछ सोचा था तूने सब तोड़ दिया, अब तू कौन है जो हमें ये बातें बताता है, और वे छोड़कर चले गए। और तब यीशु अपने छोटे झुंड की ओर घूमा, जैसे नूह के दिनों में, जैसे सादोम के दिनों में, कहा तुम भी चले जाना चाहते हो, तब पतरस ने उन महान वचनों को कहा, प्रभु हम कहाँ जाएंगे, परमेश्वर हमारी सहायता करे। ध्यान दें, जब संदेश अस्वीकार कर दिया गया और लगा कि संदेशवाहक हार गया, यही जब परमेश्वर दृश्य में आता है, उसका संदेश पूरा हो गया। नूह, अब बंद कर रहा हूँ, नूह ने अपने नाव के दरवाजे पर खड़े होकर प्रचार किया 120 वर्षों तक, जब तक जब वो अंत में वे उस पर हंसे और उसका तिरस्कार किया। नूह ने नाव में कदम रखा, ये सोचते हुए कि ये सब ठीक रहेगा, परमेश्वर ने दरवाजा बंद कर दिया और लोग देखने के लिए आसपास जमा हो गए कि अब क्या होने जा रहा है। वो सातों दिन तक वहाँ बैठा रहा पसीने में, और सातवें दिन वर्षा आ गई। ओ मूसा, वो किसमें था, कर्तव्य के मार्ग पर लोगों की अगुवाई कर रहा है, लाल सागर उसके मार्ग में आ गया, वो अपने मार्ग के अंत में था, ये तब था परमेश्वर पूर्वी हवा के साथ आया और लाल सागर को खोल दिया मार्ग के अंत में। ये डैनियल था, अपने संदेश पर स्थिर, मैं राजा के संसार से स्वयं को दूषित नहीं करूंगा, परमेश्वर के लिए सच्चाई पर खड़ा रहा, वो ठीक अपने मार्ग के अंत पर था, ऐसा लगा कि उसका अंत समय आ गया था, उन्होंने उसे सिंह की मांद में फेंक दिया, परमेश्वर दृश्य पे आ गया। और एक दिन सुबह बाबुल में आमीन। मैं स्वर्ग की ओर देख सकता हूँ, मैं एक सिंहासन को देख सकता हूँ, सरदू चारों ओर खड़े हैं। यहाँ नीचे बाबुल में देखो, मैं एक जलती हुई भट्टी देख सकता हूँ। मैं वहाँ तीन बालकों को खड़ा हुआ देख सकता हूँ, कह रहे हैं हमारा परमेश्वर हमें छुड़ाने के योग्य है, समझे, पर हम तेरी मूरत के सामने नहीं झुकेंगे क्योंकि ये वचन के विरोध में है, समझे। हम यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है। राजा ने कहा, सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ा, तुम जलने जा रहे हो। बड़ा भारी व्यक्ति उसके भाले की नोक पर, वहाँ वे सीढ़ी पर आते हैं, एक एक कदम गरम और गरम। मैं देख सकता हूँ एक स्वर्गदूत वहाँ पर खड़ा हुआ है, एक सिंहासन के एक ओर तलवार पकड़े हुए, और इसे बाहर खींचा, बोला, पिता उधर नीचे देखें क्या हो रहा है, मुझे नीचे जाने दें, मैं जिब्राइल हूँ, मैं दृश्य को बदल दूंगा, अपनी तलवार म्यान में वापस रख जिब्राइल, मैंने ये देख लिया है। यहाँ दूसरा वाला आता है, बोला, पिता मैं वॉन वुड हूँ, मैं जल से नष्ट करने वाला हूँ, बाढ़ के समय मनुष्य ने पाप किया और आपके लोगों से बुरा व्यवहार किया और मैंने सारे संसार को पानी के गोले में बदल दिया। इस सुबह मैं बाबुल को नक्शे पर से धो दूंगा, मुझे जाने दे। मैं जानता हूँ तू कर सकता है वॉर्नवुड, तू एक विश्वसनीय स्वर्गदूत है, समझे, परंतु मैं तुझे नहीं जाने दे सकता, ये मेरा कार्य है, मैं स्वयं जा रहा हूँ। यहाँ आपने उन्हें देखा, मैंने पूरी रात्रि उन पर ध्यान दिया, मैंने उनकी प्रार्थना सभा को सुना, मैंने उनका पक्ष अपने वचन पर देखा, मैं वहाँ समय पर होऊंगा। ओ प्रभु, मैं उसे उठते हुए देख सकता हूँ और उसको राजसी वस्त्र उसके चारों ओर फैल गए इस प्रकार से, और कहते हैं पूर्वी हवा, उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी, यहाँ आओ। उस गर्जन के बादल पर पांव रखा, इस प्रातः मैं तुम पर रथ के समान सवारी करने जा रहा हूँ, मैं नीचे बाबुल को जा रहा हूँ, मैं दृश्य को बदलने जा रहा हूँ। ओ भाई, वो ठीक वहाँ समय पर था, उसकी आँख गौरैया पर है और मैं जानता हूँ वो मुझे देख रहा है, वो आज रात भी मुझे देख रहा है, मुझे देख रहा है, वो आपको देख रहा है। उसने देखा कि हम स्थिर रहेंगे या नहीं, हम क्या निर्णय लेंगे, क्या हम वचन के प्रति सच्चे होंगे या उससे अलग हो जाएंगे, ये आपके सोचने से पहले। याकूब अपने घर के मार्ग पर वापस घर जाने के लिए प्रोत्साहित, उसका भाई उससे मिल रहा है। ओ परंतु एक रात उसने परमेश्वर से संघर्ष किया, वो अपने भाई से मिलने के लिए डर रहा था, परंतु अगली सुबह वो एक निडर था, लंगड़ाने वाला राजकुमार। मुझे ऐसा और उसकी सेना की आवश्यकता नहीं है, किसी की नहीं, परमेश्वर दृश्य पे आ गया, देखिए वो विचित्र ढंग से करता है। परमेश्वर का प्रमाणित पुत्र होने के पश्चात यीशु अस्वीकार किया गया, यदि मैं अपने पिता के कार्य नहीं करता, वो उस दिन का उजियाला था, वो अब भी उजियाला है, दृश्य पर आ गया, और लोग जब तक वो सका रोटी और मछलियाँ और रोटियाँ वे उसके पीछे चले, परंतु जब उसने वचन के सत्य को बताना आरंभ किया, इसने उन्हें अलग कर दिया, उनके अपने रीति रिवाज थे जो उनके पास थे, ये विरोध में थे, फिर भी आप जानते हैं वो ठीक वचन के साथ था, परंतु संसार की अंधी आंखें इसे नहीं देख सकी, नहीं अब भी वे देखते हैं, न ही वे किसी युग में, मेरा अर्थ सारे से है। क्या हुआ, ये ऐसा प्रतीत हुआ वो हार गया था, आप उसी समय से उस पर ध्यान दें, उसकी लोकप्रियता समाप्त हो गई, कब, जब उसने उन्हें वचन बताना आरंभ किया, जब वो जा सकता था और चंगाई सभाएं और अभियान, हर कोई चाहता था, ओ रब्बी यहाँ आ जा और रब्बी यहाँ आ, परंतु जब उसकी शिक्षा आरम्भ हुई, ओ तेरी शिक्षा हमारे लोगों को परेशान कर रही है, अरे बाप रे, ओ मैं आपको अपनी कलीसिया में और नहीं बुला सकता रब्बी, क्योंकि क्यों तू हमारे लोगों को भ्रमित कर देता है, तेरी शिक्षा जो हम विश्वास करते हैं उसके विपरीत है, ये नहीं बदला, समझे, ये नहीं, जी हाँ, क्या तू नहीं सकता रब्बी, फिर भी वो वचनों से समर्थन और सिद्ध हो रहा था कि वो कौन था, फिर भी वे इसका विश्वास नहीं कर सके। अंततः वो अंतिम क्षणों तक आगे बढ़ता रहा, जब शैतान ने सोचा मैंने इसे पकड़ लिया, उसने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया, नीचे 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 नीचे, जब तक कि अंत में उन्होंने सोचा उन्होंने उसे ले लिया और कब्र में रख दिया, परंतु तब ही परमेश्वर दृश्य पे आ गया और वो कब्र में से जी उठा। क्यों, यही बात पौलुस ने कहा, सब देमास ने मुझे छोड़ दिया है, वचन के कारण सब लोगों ने मुझे छोड़ दिया, मैं विश्वास नहीं करता देमास रात क्लब और आदि जगहों में गया, परंतु देमास चला जाना चाहता था, देमास एक धनी व्यक्ति था और वो लोकप्रिय लोगों के झुंड के साथ जाना चाहता था, और इसलिए वो चला गया वहीं जहां बाकी लोग चले गए थे, और तब पौलुस ने कहा सब लोगों ने मुझे छोड़ दिया है, क्यों, उसकी सेवकाई, वो इसके चोटी के पत्थर पर आ रहा था, नीचे अंत में आ रहा था। उसकी इच्छा शहीद होने की थी क्योंकि उसने स्तफनुस को मारा था। उसने उसकी मृत्यु की गवाही दी और इस पर सहमति, वो मरना चाहता था। जब वो अगबूस, वो जाना माना भविष्यवक्ता उसके पास खड़ा हुआ और उसे बताया कि यरूशलम को ना जाना, उसने कहा मैं जानता हूँ कि ना जाऊँ, परंतु मैं केवल जाना ही नहीं चाहता इन जंजीरों और बंधनों में यरूशलम को, परंतु मैं जाकर प्रभु येशु के लिए मरने को भी तैयार हूँ। ये क्या था? वो अपनी सेवकाई को मोहर बंद कर रहा था। ओ जीवते परमेश्वर की कलीसिया, हम सारी रात बातें करते रह सकते हैं और हम कैसे अपने संदेश को मोहर बंद कर सकते हैं, हम कैसे करने जा रहे हैं। परमेश्वर इस वचन को लेने के लिए हमारी सहायता करे कि बहादुरी से स्थिर रहें। मुझे वचन के द्वारा मर जाने दो, वचन के द्वारा जीना, वचन से मरना। उजियाला फैलाऊं क्योंकि सांझ के समय का उजियाला होगा। मित्रों, हम उस घड़ी में हैं, आइए इसका विश्वास करें जैसा कि हम अपने सिरों को झुकाते हैं। पहले मैं क्षमा मांगता हूं कि आप लोगों को इस सारे समय रुकाए रहा, 2 घंटे तक, 1 घंटा 45 मिनट, मैं सोचता हूं ठीक इतना ही। मैं आशा करता हूं किसी बात से आपको आघात नहीं पहुंचा। हम ठोकर नहीं खाते कि यदि ये हमारे में, यदि ये हमारे हृदय और प्राण में है तो फिर हम अपने में गलत हैं। यदि हम सेवकगण उन बातों को कहते हैं, मेरे भाई यहाँ पर ये पवित्र आत्मा से भरा पुरुष समझे, जब मैं बचाया गया और मैंने अपने बैप्टिस्ट पास्टर को बताया कि मुझे पवित्र आत्मा मिला है और ये सारी चीजें, और प्रभु के दूत ने मुझे बताया कि क्या करना है, वो बोला तुम्हें दूत स्वप्न हुआ होगा बिली। मैंने कहा डॉक्टर डेविस, मैंने एक स्वर्गदूत को देखा। उसने कहा ओ निरर्थक बात, कहा ये शैतान का है। समझे, ओ प्रभु मुझे कैसा आघात लगा। उसने कहा तुम राजाओं और हाकिमों को प्रचार करने जा रहे हो। मैंने कहा यही जो उसने कहा। उसने कहा कक्षा 7 की शिक्षा के साथ। मैंने कहा उसने यही कहा है। उसने कहा क्या सोचते हो तुम्हारी कौन सुनेगा, एक दिन इस प्रकार से दिव्य चंगाई प्रचार करने जा रहे हो और सारी अच्छी चिकित्सा खोज और चीजें। मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, कितने गोलियत वहाँ पर खड़े हैं। उसने कहा तुम क्या सोचते हो तुम्हारी कौन सुनेगा। मैंने कहा यदि परमेश्वर मुझे भेज रहा है तो वहाँ पर कोई है कि मुझे सुने, तो फिर मैं आप लोगों के विषय में नहीं जानता। और जब मैं आपके पास आता हूँ ये इस प्रकार से था जैसे हाथ में दस्ताना पहने हुए मैं आपके साथ सहयोग में, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं अपने पास सब भाइयों से प्रेम करता हूँ। आप सोचते हैं एक प्रेस्बिटेरियन, मेथोडिस्ट या लूथरन अपनी कलीसियाओं को इस प्रकार से खोलेंगे जैसे आज रात्रि इस भाई ने हमारे लिए कि यहाँ बैठे हैं और इस प्रकार का संदेश प्रचार करें? नहीं श्रीमान, बिल्कुल नहीं। ये साहसी पुरुष है जो सत्य का विश्वास करते हैं। अब वचन के साथ मेल खाएं, उनके संग देखिए, संसार की चीजों से दूर रहें। बहनों अपने बालों को बढ़ने दें, अच्छे साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। आपके लिए लज्जा की बात है, अपने चेहरे से रंग हटा दें। समझे, आपके पास रंग लगाने के लिए बहुत सारे वचन हैं, बजाय कि आप अपने बाल काटें। ये ठीक बात है, इसे ना करें। बाइबल कहती है ये करना स्त्री के लिए लज्जा की बात है, बाल आपकी महिमा है। अब आप कहते हैं ये तो छोटी सी बात है, ये ठीक बात है। इन छोटी छोटी बातों को अपनी राह से हटा दें और तब हम बड़ी बातों के विषय में बात करेंगे। इसे अभी आरंभ कर दें। अब भाइयों, ओ प्रभु, मैं उस मनुष्य को एक बात कह दूं, श्रीमान मेरे भाई, यदि आप अपनी पत्नी को इस प्रकार की चीजें करने देते हैं, मुझे आप पर लज्जा आती है और दावा करते हैं कि आत्मा से भरे मनुष्य हैं, आपके लिए लज्जा की बात है। अपनी पत्नी को सड़क पर जाने दें और आपकी वेशभूषा सब कामुकता वाली है और सारी बातें इस प्रकार से, और क्या आप जानते हैं बाइबल ने कहा, यीशु ने कहा जो कोई भी एक स्त्री पर कुदृष्टि डाले वो उसके साथ व्यभिचार कर चुका। आप कहते हैं मेरे भाई, अब आप एक मिनट रुकें, मैं निर्दोष हूँ, मैं विश्वास करता हूँ मेरी बहन आप भी, स्वाभाविक व्यवहार में आप निर्दोष हैं, परंतु यदि आप अपने को प्रस्तुत करती हैं और पापी आपको देखता है और आपने अपने आप को इस प्रकार से प्रस्तुत किया है तो कौन दोषी है? आप, क्योंकि आपने अपने आप को प्रस्तुत किया। तब न्याय के दिन जब वो पापी व्यभिचार के लिए उत्तर देगा, जिसने किया उसने अपने हृदय में ये किया, आप क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को प्रस्तुत किया। अब ये केवल सत्य है, आप नहीं करें, आप ना करें बहन। कृपा करके यीशु के नाम में मैं आपसे एक भाई के समान कह सकता हूँ सीधा सीधा, भाई आपके लिए लज्जा की बात है कि आप अपना घर इस प्रकार चलाते हैं, सही कर लें। आप एक मनुष्य के समान, मैं आपसे अधिक आशा करता हूँ। سمجھے پادریوں آپ جو ایسے لوگوں کو آنے دیتے ہیں ڈیکن اور ہر چیز کو اپنے ساتھ لیں اور اس پرکار کا کرتویہ دو تین استریوں کے ساتھ رہ رہے ہیں اور چیزیں پادریوں کیا آپ کو لجا نہیں آتی کیا آپ کو ان باتوں پر لجا نہیں آتی اور اپنے یہاں سدس سے بناتے ہیں جبکہ وہ ویبیچار میں جی رہے ہیں اور سگریٹ پیتے ہیں اور سب کر رہے ہیں اور پرچار منچ سے کبھی الیکھ تک نہیں کیا آپ کے لیے لجا کی بات ہے میں آپ کے لیے پرارتھنا کرتا ہوں بھائی پرمیشور آپ کو آشیش دے آپ کے دھیرے کے لیے دھنیواد کہ آپ نے مجھے سہن کیا مجھے آشچریہ سانج کا اجیالا آ گیا ہے سانج کا اجیالا یہاں پر ہے وچن پر واپس آؤ اب اپنے جھکے ہوئے سروں کے ساتھ آپ کے ہردے جھکے ہوئے ہیں اپنے آپ سے یہ پرشن پوچھیں کیا میں اس وچن سے ماپا گیا ہوں کیا میں میری پرارتھنا اس پرارتھنا منچ سے او پرمیشور مجھ سے ہر چیز کو کاٹ دیں جو آپ کے سامان نہیں ہے او پرمیشور مجھ سے لے لیں ہم یہاں مارگ کے انت پر ہیں ٹھیک ہے کیا آپ اتنے نستھامان لوگ کہ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور کہیں پرمیشور مجھ سے ہر چیز کو دور کر دے جو آپ کے سامان نہیں ہے پربھو مجھے بنائے مجھے ڈھالیں مجھے بنائے پربھو آپ کو آشیش دے یدی یہاں کوئی ایسا ہے جو ٹھیک نہیں ہے اور ایک پاپی ہے اور آج رات یہاں بھٹکا ہوا ہو اور مسیح کو کبھی اپنا بچانے والا سویکار نہیں کیا یا ایک پچھڑا ہوا یا کچھ واپس آنا چاہتا ہے آپ کو نمنترن ہے کہ یہاں پر آ کر ویدی پر کھڑے ہو جائیں یدی آپ وشواس کرتے ہیں کہ پرمیشور میری پرارتھنا بیماروں کے لیے سنے گا میں وشواس کرتا ہوں وہ سنے گا آپ اور میں مل کر جیسا کہ ہم اپنا وشواس یشو مسیح کے بلیدان کے اوپر رکھتے ہیں اور پرارتھنا کرتے ہیں میں وشواس کرتا ہوں پرمیشور سنے گا آپ یہاں آنے کے لیے آمنترت ہیں اور پرارتھنا کے لیے کھڑے ہوں اب ہمارے سورگیہ پتا اس بھکت منڈلی کو ہم آپ کو دیتے ہیں یہ ٹوٹے پھوٹے شبد جو دیری تک پربھو یہاں تک کہ بہت سے تھک گئے اور اوب کر گھر چلے گئے اور ہو سکتا ہے کچھ کو برا لگا اور پربھو میں بتا نہیں سکتا کہ منڈلی میں کون پورے سمے رہا اور پتا کل ملا کر پتا یہ آپ کا وچن ہے اور آپ میرے ہردے کو جانتے ہیں اس لیے اور میں ہائے مجھ پر یدی میں یہ نہیں کرتا اور مجھے یہ کرنا چاہیے پربھو اس لیے میں پرارتھنا کرتا ہوں کہ وہ لوگ جنہیں وچن کی سمجھ ہے اسپشٹ روپ سے سمجھیں گے اور میں نشچت ہوں وہ جن کو آپ نے جیون کے لیے بلایا آئے گا یہ سنسار میں کچھ نہیں ہے سوائے پرمیشور کے لیے پریم بھرا ہردے اور اس کی کلیسیا کہ میں نے ان باتوں کا نویدن کیا پتا ویوہارک روپ سے ہر ہاتھ یہاں ایک ختنے کے لیے اوپر اٹھا ہے کہ ساری فالتو چیزیں کاٹ دے جو یہاں سے نہیں ہیں پرمیشور ہم سب کی سہایتا کرے پربھو میں ٹھیک ان کے سنگ کھڑا ہوں میں ان میں سے ایک ہوں میں اس مہان سہسر شتابدی کے دن کی پرتیکشا کر رہا ہوں جب پاپ اور لجا سدا کے لیے نشٹ ہو گئے ہیں اور پتا جبکہ ہم اس سنسار میں ہیں ہم جانتے ہیں کہ ہم ان باتوں کی ادھینتا میں ہیں ہم غلطیاں کرتے ہیں ہم پاپ کے ادھین ہیں ہم اب بھی چل رہے ہیں اور پھر بھی ہماری اچھا یہ کرنے کی نہیں ہے جیسا کہ بائبل نے کہا نراش نہ ہو جب نندا کی جائے پرنتو پتا میں پرارتھنا کرتا ہوں کہ وچن کی نندا مجھے بہت بری طرح سے کاٹتی ہے جیسا یہ ان باقیوں کو کاٹتی ہے اور میں پرارتھنا کرتا ہوں پتا کہ یہ اسے اسی پرکار سے سمجھیں گے میں پرارتھنا کرتا ہوں آپ انہیں آشیشت کریں گے اب اور ہونے پائے یہ جیسا کہ ہم نے پہلے پرارتھنا کی ہے پربھو جانتے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہم کس لیے مانگتے ہیں کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم غلط مانگے ہم ایسا کچھ نہیں مانگنا چاہتے جو بس بڑھ چڑھ کر ہو کیونکہ ہم آپ سے باتیں کر رہے ہیں میں مانگتا ہوں کہ آپ ہمارے چھوٹے بھائی کو آشیشت کریں جس نے اپنے دروازے میرے لیے کھولے کہ آج راتری میں یہاں پر آؤں میں پرارتھنا کرتا ہوں کہ آپ اس کی کلیسیا کو آشیشت کریں گے ہونے پائے کہ اس کا ہر سدسیہ پربھو چھوٹا سا یہ ایک پرکاش استمبھ ہو جائے ایک استھان جہاں پرمیشور کے وردان بہ رہے ہیں اور ہر چیز سرلتا میں دوڑ رہی ہے ہر سیوک کو آشیشت کرے جو یہاں پر بیٹھا ہوا ہے ان کی کلیسیاں اور ہونے پائے ایسی ہلچل ہو یا ایک شہتوت کے پیڑ میں آواز پرمیشور کے آتما کی فینکس پر سے ہو کر نکلے اور کلیسیاؤں کو سنگتی میں لے آئے اور ایک مہان بیداری کی سیوک گن پرچار کرنے کے یوگیہ نہ ہو پرمیشور کی مہیما کے کارن پرنتو جب سنت ایک ساتھ آئیں اس دوپہر بعد کی پہلے اور روتے اور پرارتھنا کرتے ہوئے اور گواہی دیتے ہوئے اور سندیش بس ایک واستوک آتما کا اڈیلا جانا جب سارا شہر آنے کے لیے آکرشت ہوگا کہ سنیں اب اسے پردان کریں پربھو ہمارے بیچ میں بیماروں کو چنگا کریں انہیں دیویہ چھٹکارا دیں پتا یشو مسیح کے نام میں ہوتے ہوئے اب اپنے جھکے ہوئے سروں کے ساتھ यदि यहाँ कोई हो जो यहाँ वेदी के आसपास खड़े होने की इच्छा करता हो अब, और जबकि हमारे सिर झुके हुए हैं और हम एक छोटा सा गीत गुनगुनाने जा रहे हैं, एक अच्छा पुराना सुसमाचार का गाना, और हम उसे गुनगुनाना चाहते हैं। और जब हम कहते हैं यदि किसी की इच्छा हो कि हम उसके लिए प्रार्थना करें कि एक गहरे अनुभव के लिए कि पवित्र आत्मा प्राप्त करें, या आप बच गए और अभी भी पवित्र नहीं हुए हैं, या जो हम आनंद करने के लिए हों कि जब हम गुनगुना रहे हैं इस छोटे गाने को, मैं उससे प्रेम करता हूं, और यदि आप उससे प्रेम करते हैं तो चलिए हम अब उसके वचन का आदर करें। मैं उससे प्रेम करता हूं, मैं उससे प्रेम करता हूं, क्योंकि उसने पहले मुझसे प्रेम किया। और मेरे उद्धार को खरीदा कलवरी के वृक्ष पर। जबकि वे लोग आ रहे हैं, मैं चाहता हूं कि प्रत्येक यहां अपने स्थान को ले। अब ठीक है बहन, उससे प्रेम करता हूं, मैं उससे प्रेम करता हूं, क्योंकि वो। अब आइए वेदी के आसपास, अब आप जो आना चाहते हैं, मुझे और मेरे उद्धार को खरीदा कैलवरी के। क्यों नहीं आप में से कुछ बहनें छोटे बालों के साथ यहाँ आएं और परमेश्वर से प्रतिज्ञा करें। आप चाहते हैं कि मैं बाइबल में से आपके लिए पढूं? ठीक है, यहाँ पर आकर नहीं कहते प्रभु मैं हर बात में ठीक होना चाहता हूँ, और मैं ठीक होना चाहता हूँ, और मैं सही मार्ग पे चलना चाहता हूँ, और वहीं टिका रहूँ। आज रात्रि मैं आपसे प्रतिज्ञा करना चाहता हूँ प्रभु, ये अब के बाद से बढ़ता रहने वाला है। बाइबल ने कहा पुरुष के लिए लज्जा की बात है कि वो लंबे बाल रखे, स्त्री जैसे दिखाई पड़े। परमेश्वर ने दो वाचाएं बांधी, एक आदम के साथ और हवा के साथ। उसने उन्हें भिन्न वस्त्र दिए, कुल मिलाकर वे भिन्न हैं, वे सदा से भिन्न रहे। वहाँ बाइबल में होकर दो वाचाएं हैं। एक रात्रि मैं उन दोहरी वाचाओं पर प्रचार करना चाहता हूँ, कभी आपको दिखाऊं क्या भिन्नता है। ओ प्रभु, यह आश्चर्यजनक है, यहाँ तक कि यह आपके विवाह और तलाक के मामले में है। यदि आप केवल इसका सत्य जानते, ये सारे मामले को तय कर देगा। ये ठीक बात है, ठीक है। अब फिर से जबकि हम निश्चित हैं, आइए, क्या आप नहीं? मैं उससे प्रेम करता हूँ, क्या आपको पवित्र आत्मा चाहिए? आइए पास में खड़े हो जाएं। क्योंकि उसने पहले मुझसे प्रेम किया, और आप उसके साथ साथ चलना चाहते हैं, आइए शपथ लें, उसके बराबर में खड़े हों और इसे बनाए रखें। इस शपथ लेने से क्या लाभ होगा जब तक हम उस पर बने ना रहें? पर आप आए और अपनी शपथ लें, परमेश्वर इसे पूरा करेगा। आप बस अपनी शपथ पर बने रहें। अब मैं अपने सेवक भाइयों से कहने जा रहा हूँ, यदि आप यहाँ आसपास आ जाएं, ये बहुमूल्य लोग, जबकि हम ठीक यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं, एक दूसरे से बात करें, जबकि हम यहाँ पर हैं, उनकी आवश्यकता को आप पूछें। हर कोई श्रद्धा भाव में रहे जितना आप हो सकते हैं, अब परमेश्वर आपको सम्मानित करेगा। वास्तव में श्रद्धा भाव में रहें जब तक प्रार्थना होती है। अब आप आसपास आ जाएं, यहाँ चारों तरफ और इन लोगों के पीछे जो यहाँ प्रार्थना के लिए खड़े हैं। कैलवरी के वृक्ष पर। अब फिर से जबकि सेवकगण दोनों ओर आसपास जमा हो रहे हैं, मैं उससे प्रेम करता हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ। विभिन्न संगठनों के सेवकगण सब एक में हैं, ये लहू के नीचे हैं। क्योंकि उसने मुझसे पहले प्रेम किया, और मेरे उद्धार को खरीदा कैलवरी के वृक्ष पर। ओ प्रभु, अब आइए भाइयों आए सीधे अपने व्यक्ति के पास जिसके पास आप खड़े हैं, अपने हाथ उन पर रखें और उनसे पूछें वे परमेश्वर से क्या चाहते हैं। ये एक शानदार समय है, आप जानते हैं। जब मैं ये देखता हूँ, इधर देखिए, विभिन्न कलीसियाओं के सेवकगण यहाँ पर एक साथ खड़े हैं। वे बहनें जो वहाँ चारपाइयों में बाहर थीं, चली गईं। प्रभु की महिमा हो, इसके लिए बहुत धन्यवादित हूँ। प्रभु आपके नाम में खड़े हुए हैं। अब सारे श्रोतागण, अब हर कोई अपना सर झुकाए। अब आप में से प्रत्येक अपने हृदय में परमेश्वर से ऐसे ही बात करें जैसे आप मुझसे बात करेंगे, जैसे कि आप आते और कहते हैं, भाई बर्नम, मैं यदि आपने कुछ गलत किया है तो कहें, मुझे खेद है भाई बर्नम, मैं ये किया, क्या आप मुझे इसके लिए क्षमा करेंगे? मैं आपसे प्रतिज्ञा करता हूँ भाई बर्नम, मैं आपके विरोध में फिर कभी नहीं करूँगा। अब मुझे नाम से बदल दें, मुझसे आपके प्रभु यीशु मसीह में। और यदि आपको चंगाई की आवश्यकता है, जैसे कि आप कहेंगे, भाई बर्नम, मैं टूट गया हूँ, आज रात्रि मेरे पास रात्रि का भोजन नहीं है, और हाँ, मैं जानता हूँ यदि आपके पास एक डॉलर होता आप मुझे दे देते। अब देखिए, आपको ये परमेश्वर से नहीं कहना है यदि आपके पास चंगाई की सामर्थ है। देखिए, ये है उसके पास, आपको मुझसे कहना है यदि आपके पास है ये। परंतु उससे आपको ये नहीं कहना है यदि आपके पास है, उसके पास है, समझे। इसलिए आप कहते हैं जैसे, भाई बर्नम, क्या आप मुझे एक डॉलर देंगे, मैं मुझे कुछ खाने को चाहिए, क्यों, निसंदेह मैं करूंगा, ये आप जानते हैं। यदि मेरे पास होता किसी समय मैं आपको देता, यदि मैं ना दूं तो मेरे पास भयानक हृदय है, यदि मैं ना करूं और मैं क्रूर होने के नाते पापी मनुष्य और अच्छे हृदय वाला होता आपके किसी के समान, तो परमेश्वर क्या होगा। यदि आप दुष्ट होकर जानते हो कि अच्छा उपहार कैसे दें, तो फिर आपका स्वर्ग पिता कितना और अधिक होगा। पिता, इन्हें आत्मा दें जो ये मांग रहे हैं। यदि तुम मछली मांगोगे, क्या वो तुम्हें सांप देगा? रोटी मांगो, क्या वो तुम्हें पत्थर देगा? निश्चय ही नहीं। क्यों? यदि आप उससे इस प्रकार मांगो, विश्वास के साथ विश्वास करते हुए, और उससे लाखों गुना जल्दी पाओगे बजाय मुझसे कुछ पाने के। और आप जानते हैं, मैं आपकी सहायता करूंगा, मैं कुछ भी करूंगा जो कर सकता हूँ, इनमें से कोई भाई भी कभी करेगा। हम अपनी जेब से हर पैसा निकाल देंगे कि आपकी सहायता करें, हम कुछ भी करेंगे जो हम कर सकते हैं। परंतु ये कुछ ऐसा कि आपको विश्वास से भरोसा करना है। अब आप विश्वास करें कि आपको मिलेगा, जबकि हम प्रार्थना करते हैं और आप प्रार्थना करते हैं और मंडली प्रार्थना करती है, और मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूं कि परमेश्वर नीचे उतरेगा और हमारी प्रार्थना को सम्मानित करेगा। और ठीक उसी घड़ी जब आप अनुभव करते हैं कि आपको ये मिल गया कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देने जा रहा है, तब आप वाचा बांधते हैं, प्रभु मैंने गलत किया है, मैं अब ये और नहीं करूंगा, मैं अपना हाथ उठाऊंगा, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ आपसे, मैं नहीं करूंगा। परमेश्वर आपके वचन पर आपको लेगा, और आप बस इसी प्रकार से विश्वास करें और ये हो जाएगा। तब अपने हाथों को उठाएं और उसे धन्यवाद दें, प्रभु मैंने प्रतिज्ञा की है और मैं जानता हूं कि ये आपकी है, और आपने उत्तर देने का वायदा किया है, और आप असफल नहीं हो सकते। स्वर्गीय पिता, हम आपके दास इस झुंड के साथ जो कि सामने आए हैं, आपकी आशीषों की आवश्यकता है, और इस समय आपका ध्यान पिता ये संदेश के पुरस्कार हैं, सांझ का समय। प्रभु, इनमें से बहुत से स्वीकार कर रहे हैं, इनमें से कुछ निराशात्मक आवश्यकता में हैं। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि यीशु के नाम में कि एक को भी अस्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि आप अपना वचन बनाए रखेंगे। मैं आपका वचन आपको स्मरण करा रहा हूँ प्रभु, जैसा पतरस ने किया और चेलों ने जब उन्होंने प्रेरित 4 में प्रार्थना की, उन्होंने कहा, प्रभु वचन को स्मरण कर, अन्य जातियों ने क्यों हुल्लड़ काटा और लोगों ने व्यर्थ कल्पनाएं की। अब पिता, हम आपका वचन लेते हैं, आपने कहा, वो जो मुझ पर विश्वास करता है उसके पास अनंत जीवन है, वो जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी ना निकालूंगा, वो जो मेरा वचन सुनता और उस पर विश्वास करता है जिसने भेजा उसके पास अनंत जीवन है, और वो न्याय में नहीं आएगा परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में आ गया। ओ, अपने निवेदन परमेश्वर को बताएं और वो हमें उत्तर देगा। वो बहुतायत से, वो जो अपना पाप मान लेगा क्षमा किया जाएगा, वो जो अपना पाप छिपाता है फले फूलेगा नहीं। हम अपनी गलतियों को मानते हैं, मैं लोगों की गलतियों को स्वीकार करता हूँ, मैं अपनी गलतियाँ स्वीकार करता हूँ, मैं दया मांगता हूँ, मैं चंगाई मांगता हूँ, मैं अनुग्रह मांगता हूँ, मैं मांगता हूँ कि आप पवित्र आत्मा उंडेलेंगे प्रभु, इसी समय इन पर प्रतीक्षा करते हुए लोग कि उनके जीवन बदल जाएं, परमेश्वर ढालने वाले सांचे में और परमेश्वर के पुत्र की छवि में ढल जाएं, कि वो आत्मा जिसने उसे जिलाया वो इनकी देहों में आएगा और इन्हें परमेश्वर का पुत्र और पुत्रियां बना देगा। प्रभु इसे प्रदान करें। हम विश्वास करते हैं कि आप उपस्थित हैं, हम विश्वास करते हैं कि आप अपने वचन को सम्मान देंगे, हम विश्वास करते हैं आप वचन की कोशिशों का सम्मान करेंगे। अब इन आशीषों को इन लोगों पर भेजें जो आपकी उपस्थिति की प्रतीक्षा में हैं, कि आप इनसे वेदी पर मिलें यीशु के नाम में। अब यदि आप विश्वास करते हैं और विश्वास की आपने पा लिया, अपने हाथ परमेश्वर की ओर उठाएं। यदि आप ये स्वीकार करते हैं कि ये विश्वास की प्रार्थना और आपकी प्रतिज्ञा, जैसे कि आप परमेश्वर की ओर फिरते हैं, अपने हाथों को उठाएं और आइए मंडली खड़ी हो जाए, हर कोई खड़ा हो जाए जो परमेश्वर के साथ वाचा बांधना चाहता है। अब कहे, मैं इसका विश्वास करता हूँ, मैं इसे स्वीकार करता हूँ, मैं इसका विश्वास करता हूँ। अब अपने हाथों को उठाएं और उसे महिमा दें, और ये सब पूरा हो गया। परमेश्वर की महिमा हो। धन्यवाद प्रभु यीशु आपकी भलाई के लिए और आपकी दया और उस सब के लिए जो आपने हमारे लिए किया। प्रभु हम तुझे महिमा देते हैं यीशु मसीह में होकर।